आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय का भाग दो को के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले पिछले दिन का प्रश्न एक, जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं। पहला धन का अभाव, दूसरा बीमारी, तीसरा बुढ़ापा, चौथा खराब पारिवारिक संबंध, आतंकवाद, अपने अस्तित्व के विषय में अज्ञानता। यस एफ। दूसरा, सही आध्यात्मिक गुरु वह है जो पहला चमत्कार दिखा सकता हो, दूसरा बड़ा तपस्वी हो, तीसरा हमारी मनोकामनाएं पूरी कर सकता हो, चौथा विद्वान पंडित हो, पांचवा भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त हो जो हमें शुद्ध भक्ति में प्रशिक्षित कर सकता हो। लास्ट और इसके अलावा भी किसी का हाँ जी, एक 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 करके हाँ जी, हाँ वो लास्ट, उसके अलावा सेकंड लास्ट विद्वान पंडित हो। तो अगर कोई व्यक्ति विद्वान पंडित है लेकिन अगर कृष्ण भक्त नहीं है तो वो भी गुरु नहीं हो सकते, क्योंकि भक्त ही भगवान को दे सकते हैं। संस्कृत अध्ययन, शास्त्र अध्ययन भी पर्याप्त नहीं है। भगवान बताते हैं वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ, मैं वेदों के द्वारा दुर्लभ हूं लेकिन अपने भक्ति से सुलभ हूं। तो इसलिए विद्वान पंडित होना भी उसकी लायकात नहीं है। और जो भगवान का भक्त होता है वो स्वतः भगवान की कृपा से भगवान के विषय में सब कुछ जानता है जो आवश्यक है, इसलिए वो पंडित होता ही है जो भक्त होता है। लेकिन जो पंडित है जरूर नहीं वो सब भक्त हों, तो इसलिए वो नहीं है। और इसके अलावा किसी का और कोई उत्तर है? नहीं, इनमें से तीसरा आत्मा। पहला हर शरीर में अलग अलग है, दूसरा मुक्ति प्राप्त होने पर परमात्मा मिल जाती है, तीसरा आत्मा का रूप है भौतिक नहीं आध्यात्मिक। ओके, दूसरा किस किस का है? आत्मा मुक्ति होने पर आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, दूसरा ऑप्शन एक का है, और किसी का है? नहीं। पहला और तीसरा किस किस का है? ओके, तो मिल जाती है मतलब आत्मा का फिर अपना अस्तित्व नहीं रहता, एक हो जाती है, घुल जाती है, जैसे पानी घुल जाता है ऐसे ही आत्मा परमात्मा घुल जाती है। मुक्ति होने पर आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। अगर बाद में हम बाद में वो परमात्मा हो जाता है तो यानी कि हम इस समय इस स्थिति में कैसे आए कि परमात्मा ही थे लेकिन अभी अज्ञानता की वजह से हम आत्मा हैं, तो जब अज्ञानता हट जाएगा तब वापस परमात्मा बन जाएंगे, है ना। तो अगर हम परमात्मा ही थे तो फिर अज्ञानता से कैसे कवर हुए? परमात्मा हमारे बनने का मतलब है कि हम वास्तव में परमात्मा हैं लेकिन अभी हम अज्ञानता से ढके हुए हैं। तो अगर हम परमात्मा ही हैं तो फिर अज्ञानता क्या परमात्मा को भी ढक सकता है? तो फिर तो परमात्मा का मतलब क्या रह गया? परमात्मा का मतलब जो सबसे ऊपर है। तो अगर परमात्मा भी अज्ञानता में आ सकता हो तो फिर वो कैसा परमात्मा? तो इसलिए आत्मा कभी भी भगवान नहीं है, कभी भी परमात्मा नहीं है, आत्मा हमेशा भगवान का दास है, इस अवस्था में भी और मुक्त अवस्था में भी। अभी हम उसको भूले हुए हैं कि हम भगवान के दास हैं, इसलिए इस भौतिक जगत को भोग करने की इच्छा कर रहे हैं। मुक्ति अवस्था है जिसमें हम वापस इसका स्मरण करते हैं कि हम भगवान के दास हैं। तो आत्मा परमात्मा में मिलता है किस तरह से कि अभी आत्मा और परमात्मा, आत्मा जानता है कि मैं परमात्मा का दास हूं इसलिए मैं परमात्मा के आदेश के अनुसार कार्य करूं, इस दृष्टि से वो परमात्मा के साथ एक होता है, न कि ऐसा कि वो अपना उसका अपना सत्ता ही खत्म हो जाता है, वो सब एक हो जाता है, उसका कोई सेवा नहीं रहती, अभी वो एक ही हो गया, परमात्मा बन गया। परमात्मा बनते नहीं है हम, परमात्मा बनते नहीं है। परमात्मा जैसे गुण अर्थात ये शरीर त्याग करके हम भी अपनी जो आध्यात्मिक सच्चिदानंद स्वरूप है उसको प्राप्त करते हैं जिसमें हम भगवान के नित्य सेवक रहते हैं। ओके, चौथा कर्तव्य निर्वाह करते हुए जीवन में आने वाले सुख एवं दुखों के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? तो ये हमने एक श्लोक 2:14 में से लिया था। तो इसका उत्तर आप लोगों ने लिखा होगा, क्या होना चाहिए दृष्टिकोण? नहीं ऐसे ही बताइए जस्ट संक्षिप्त में।
हाँ
नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या करना चाहिए?
समान रहना चाहिए,
समान रहते हुए अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, कर्तव्य कर। हाँ यस, उसमें उसमें ओके सुख दुख में विचलित न होकर कर्तव्य निर्वाह करते रहने वाले व्यक्ति को क्या फल प्राप्त होता है, कोई बताएंगे? सुख दुख में विचलित न होकर कर्तव्य निर्वाह करते रहने वाले व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? अमृतत्व, अमृतत्व, अमृतत्व मीन्स जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवत धाम में भगवान के सानिध्य में भगवान की नित्य सेवा में रत रहना, ये फल प्राप्त होता है। आत्मा अमर है तो फिर हत्यारे को सजा क्यों दी जाती है? हाँ जी,
हत्यारे ने जो भी कृत्य किया है वो अपराध भाव से किया है, और मानव संहिता ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि हत्यारे को देहांत का दंड दिया जाए तो उसको अगले जन्म में पाप कर्म से मुक्ति मिलेगी।
हाँ लेकिन वो पाप क्यों है? वो आत्मा तो अमर है, आत्मा तो मरा नहीं, शरीर तो वैसे ही मरने वाला था, तो अगर किसी ने शरीर को मार दिया तो शरीर तो वैसे ही मरने वाला था, तो फिर उसको पाप क्यों गिनते हैं, अपराध क्यों कहते हैं उसको? एक एक मिनट, अपराध भाव मतलब तो अगर अपने पड़ोसी के स्वार्थ के लिए किया जाए तो चलेगा? हाँ, आप बता रहे थे कुछ। हाँ
कर्तव्य पालन से बाहर कुछ भी किया गया तो अपराध भाव से किया गया, तो उसी हिसाब से अगर किसी की हत्या की थी तो वो अपराध भाव हुआ, और उसके हिसाब से अगले जन्म में उसका कर्म फल भुगतना ना पड़े इसलिए उसको।
यस करेक्ट। तो जब हम धर्म के विहीन अपने स्वार्थ के लिए किसी को हत्या कर रहे हैं तो इसलिए ये पाप है, लेकिन अगर भगवान के आदेश पर या धर्म के आदेश पर जैसे कोई सैनिक मारता है तो फिर वो अपराध नहीं है, फिर वो पुरस्कार के योग्य है। करेक्ट। लास्ट, कर्तव्य निर्वाह करने में ऊपरी दृष्टि से हुए पापों का फल क्या व्यक्ति को मिलता है? कर्तव्य निर्वाह करने में ऊपरी दृष्टि से हुए पापों का फल क्या व्यक्ति को मिलता है? जैसे कि अर्जुन, तो अर्जुन इतने लोगों को मारे, तो कई बार लोग कहते हैं कुछ लोग कि भगवान कृष्ण ने इतने सारे लोगों को मरवा दिया इसलिए वो अभी वो दुर्गति में है, तो एक्चुअली बहुत बड़ा पाप है खुद ऐसा बोलना। तो ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, भगवान के विषय में छोड़िए, कोई व्यक्ति के विषय में भी यदि वो अपने कर्तव्य कर रहा है उसे कर्तव्य में कुछ, हर एक कार्य करने में कुछ साथ साथ कुछ त्रुटियां होती ही हैं, कुछ आप यज्ञ करेंगे तो उसमें कुछ कीड़े मकोड़े आके मर जाएंगे, आप अग्नि जलाएंगे अग्नि में कुछ कीड़े कुछ मर जाएंगे, हर एक चीज में कुछ भी आप कार्य करने जाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ पाप, सो कॉल्ड पाप लगेगा, तो क्या उसका फल मिलेगा? तो यदि हम कर्तव्य निर्वाह करने में निष्ठ हैं तो फिर, यानी भगवान की सेवार्थ कार्य कर रहे हैं तो फिर वो पाप से रहित होता है। तो ये अर्जुन को भगवान बताना चाहते हैं कि तुम ये जो कार्य कर रहे हो, युद्ध कर रहे हो, क्योंकि ये धर्म के अनुसार है, ये मेरी इच्छा के अनुसार है, तुम मेरी संतुष्टि के लिए कर रहे हो, इसलिए तुम चिंता मत करो कि इसमें मुझे पाप रहेगा, ये पाप से मुक्त है ये कार्य। तो इस प्रकार से हमने ये प्रश्न लास्ट टाइम देखे। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 38 श्लोक के आगे से प्रारंभ करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यहां मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण अभी तक अर्जुन को, जैसे हमने पिछली बार देखा, बताए कि शरीर और आत्मा में भेद क्या है, ये विषय को बताए। इसे कहते हैं सांख्य, कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये विश्लेषण दृष्टि से भगवान अलग अलग एंगल से बताया कि कैसे हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इसको सांख्य योग कहते हैं। तो आशा की जाती है कि हम लोग भी कम से कम कुछ हद तक इस विषय को अभी समझे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हालांकि इसकी अनुभूति पूरी तरह से, इसकी समझ, गहरी समझ के लिए हमें ये पूरे प्रोसेस का अभ्यास करते रहना होगा, जिससे कि ये अनुभूति, ये समझ प्रगाढ़ हो। मात्र एक दो बार सुनने से ही ये समझ क्लियर नहीं हो सकती है, इसलिए बार बार भगवद्गीता पढ़ना, बार बार उसका अनुशीलन करने के लिए अपने को हमेशा प्रयास करना ही जरूरी है। लेकिन कुछ समझ कम से कम हमारे अंदर ये आई है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो अभी ये जान लेने के बाद फिर हमें क्या करना है, ये नेक्स्ट स्टेप है। जान लिया हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो हमें क्या करना है। यहां से भगवान अभी बताना शुरू करते हैं कि ये जान लेने पर हमारा कार्य क्या होना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य बनता है, ये जान लेने पर कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो इसे भगवान कहते हैं बुद्धि योग। अभी तक मैंने सांख्य योग बताया, अभी तुम्हें बुद्धि योग बता रहा हूं। अर्थात अभी तक तुम्हें बताया कि ज्ञान क्या है, कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और अभी इस ज्ञान के आधार पर कार्य करना, वो है बुद्धि योग। तो सामान्य रूप से जो लोग भगवद्गीता के ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, वो लोग किस हेतु से काम करते हैं, वो केवल शरीर के संबंध में काम करते हैं, केवल शरीर के सुख दुख का ध्यान रख के काम करते हैं। जिस चीज से शारीरिक सुख मिलता है वो करते हैं, और जिस चीज से शारीरिक दुख मिलता है उससे दूर रहते हैं। ये उनका क्राइटेरिया होता है, क्या करें क्या ना करें। जिसको शास्त्र की दृष्टि में बताया गया है, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के यत ध्री कलक्तादिशु भौम इज्जधि यत तीर्थ बुद्धि सलिलेन करहिचित जनेश अभिज्ञेशु स एव गोखरा। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। बड़ा कठोर शब्दों में इस श्लोक में बताया गया है कि जो लोग अपने को तीन धातुओं का बना शरीर मानते हैं, तो आयुर्वेद की दृष्टि से हमारा शरीर तीन धातुओं का बना है, कफ पित्त और वायु। तो यस्य आत्मा बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, इन तीन धातुओं से बने शरीर को ही जो खुद मानता है कि यही मैं हूं, यानी जो अपने को शरीर मानता है, उसकी जो बुद्धि है वो यही चलती है कि मैं शरीर हूं। यत धी कलत्रादिशु, और इस वजह से उसकी बुद्धि मात्र केवल पत्नी बच्चे इस प्रकार के पारिवारिक संबंधों जो शरीर के आधार पर होते हैं, ये सब पत्नी ग्रह इत्यादि ये सब शरीर के आधार के संबंध हैं, जिसकी बुद्धि केवल वहीं तक संकुचित रहती है, उसी में ही आनंद प्राप्त करने की वो कोशिश करता रहता है। कलत्रादिशु भौम इज्जति, और इस शरीर के जन्म स्थान को वो पूज्य मानता है, क्योंकि मात्र इसीलिए क्योंकि उसका शरीर का जन्म वहां हुआ है, यानी कि पूरी तरह से वो अपने को शरीर मान करके और शरीर के संबंध में हर चीज को अपना मानता है। और जो तीर्थ स्थानों में केवल वहां स्नान करने के लिए आता है नदियों में, जिससे कि जो उसका पाप है, जो पूरा एक साल पाप किया है, उस पाप को फलों को धोने के लिए वो नदी में स्नान करने जाता है, कि नदी में जाएंगे अभी स्नान कर लेंगे, अभी तक जो पाप हुए धुल गए, अभी नेक्स्ट एपिसोड शुरू करेंगे अगले साल का कोटा, और फिर दोबारा अगले साल जाकर के फिर हरिद्वार जाकर के गंगा नदी में स्नान करके फिर अपने पाप कर्मों को वहां धो के आ जाएंगे, जो ऐसा करता है। और वहां पर जो तीर्थ स्थानों में जो आए ज्ञानी पुरुष हैं, जो भक्त हैं, उनसे सुनता नहीं है भगवत संदेश, केवल तीर्थ यात्रा इसीलिए करता है, यानी कि वो भी देहात्म बुद्धि में ही करता है, देह के सुख के लिए करता है। स एव गो खरा, वो गाय और खर खर मीन्स गधे के समान है। बड़े स्ट्रांग शब्दों में भागवतम में भर्सना की है, तो ये बड़ा गंभीर विषय है और ये महत्वपूर्ण विषय इसलिए क्योंकि वास्तव में आप देखिए तो जानवर भी क्या करते हैं, ये स्ट्रांग लग सकता है लेकिन इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। तो जानवर भी तो केवल देह के संबंध में ही कार्य करते हैं, देह से ऊपर और कुछ नहीं सोच सकते। उनके लिए कर्तव्य क्या है? इंद्रिय संतुष्टि। तो इसलिए यदि मनुष्य भी केवल अपना कर्तव्य निर्धारित करे शरीर के संबंध में कि मेरा कर्तव्य है कि ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये मेरा शरीर है, बस इनके क्योंकि ये मेरे संबंधी हैं इनकी मैं सेवा करूं और इस प्रकार से सुखी जीवन पारिवारिक जीवन बिताऊं और मेरा घर है धन संपत्ति है, केवल शारीरिक सोच, आत्मा के स्तर पर कोई सोच नहीं, केवल शरीर के संबंध में ही सोचता है, तो वो व्यक्ति किस तरह से पशुओं से उत्तम है? पशु भी ऐसा सोचते हैं। तो पशु भले ही हमें लग सकता हो नहीं पशुओं में तो इंटेलिजेंस कम है, पशु तो कपड़े नहीं पहनते हैं, लेकिन पशु तो घर में नहीं रहते हैं, बड़े बड़े बंगलों में नहीं रहते हैं, वो तो कारों में नहीं घूमते हैं, वो तो टेक्नोलॉजी में एडवांस नहीं है, हम सब लोग कह सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली यदि हमारी टेक्नोलॉजी, यदि हमारा घर, यदि हमारे सभी का हेतु वही है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतद् पशुभिर्निर्णानाम्, ये चार चीजें ही यदि हमारा फोकस है आहार निद्रा भय और मैथुन, तो फिर चाहे हम बंगले में रहें या जानवर सड़क पर रहें, चाहे हम फाइव स्टार होटल में जाए खाएं या जानवर सड़क पर खाएं, चाहे जानवर चार पैर से भागें और हम चार पहिए की कार में भागें, लेकिन हेतु तो वही है, कॉन्शियसनेस तो वही है, चेतना तो वही है। इसीलिए शास्त्रों की दृष्टि से ऐसा जीवन पशु जैसा ही है, पशु तुल्य है। तो इसलिए यहां पर भगवान बताना शुरू कर रहे हैं कि वो बुद्धि नहीं जो जानवरों की बुद्धि है, ऐसी बुद्धि नहीं, उससे अलग बुद्धि योग। बुद्धि योग मतलब वो बुद्धि जो भगवान के साथ संयुक्त है, जुड़ी है, जो बुद्धि भगवान के आदेश के अनुसार कार्य कर रही है, जो कार्य भगवान के मार्गदर्शन में हो रहा है, उस कार्य को बुद्धि योग कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम भक्ति योग है, जिसका दूसरा नाम कर्म योग है। ये सब प्रायवाची हैं एक दूसरे के। कर्म योग मतलब कर्मों को, योग मतलब भगवान से लिंक करना। तो जो कार्य भगवान से लिंक्ड हैं, अर्थात भगवान के आदेश के अनुसार होते हैं, उसे कर्म योग कहते हैं। उसी प्रकार से भक्ति, भक्ति मतलब भगवान की सेवा। तो ये बुद्धि योग के भक्ति योग इस प्रकार से प्रायवाची हैं, जिसका वर्णन अभी भगवान शुरू करने जा रहे हैं। और दसवें अध्याय में स्पष्टतः भगवान बोलते हैं, तेषां सतत युक्ता नाम भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। तेषां मतलब उनको, सतत युक्ता नाम जो सतत रूप से, भजतां प्रीतिपूर्वकं प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा करते हैं, मेरा भजन करते हैं, ददामी बुद्धि योगम मैं उनको ये बुद्धि योग देता हूं, मैं उनको बुद्धि देता हूं, येन माम उपयान्ति ते, जिससे वो मेरे तक आते हैं। तो वही बुद्धि योग की बात यहां पर भगवान कर रहे हैं कि ये बुद्धि योग यानी कि मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करना, मेरे मार्गदर्शन में कार्य करना, इसको सिखा रहे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि कैसे मेरी बुद्धि, मेरी मार्गदर्शन के अनुसार आपको कार्य करना है तो कैसे करना है। अभी भगवद गीता का सबसे एक बहुत फेमस श्लोक जो आप काफी लोगों को याद होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगस्तो अकर्मणि। तो ये बहुपरिचित श्लोक है भगवद गीता का। इस श्लोक का अर्थ क्या है? कर्मण्य एव अधिकारस्ते, तुम्हें अपना कर्म या कर्तव्य करने का अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। मा कर्म फल हेतुर्भू, तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो। मा ते संगस्त्व अकर्मणि, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तो सामान्य रूप से इस श्लोक का अर्थ हम क्या लेते हैं, जब हम पढ़ते थे तो ये क्विज में पूछा जाता था क्वेश्चन, और फिर उसका अर्थ जो सामान्य पब्लिक में बहु प्रचलित है वो क्या है, काम करो फल की चिंता मत करो, क्योंकि काम करना तुम्हारे हाथ में लेकिन फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, फल कौन देने वाला है, भगवान देने वाले हैं, इसलिए तुम बस अपना काम किए जाओ और फल जो है वो तुम देने वाला नहीं, वो भगवान देने वाला, वो देगा, वो फल देगा, तुम बस काम करो और फल देने वाला भगवान है वो देगा, इसलिए उसकी चिंता मत करो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो मिलेगा ही अगर तुम काम करोगे तो, है ना, करेक्ट, यही सोचते हैं हम लोग जनरली श्लोक का अर्थ, कि आपको काम करने का अधिकार है, आप फल के अधिकारी नहीं, फल देने वाला भगवान है, इसलिए आप बस काम करो और फिर भगवान पे छोड़ो, भगवान देगा अपने आप फल। लेकिन ये उसका तोड़ा मरोड़ा हुआ मतलब है, इसका अर्थ है आप कर्म करने के अधिकारी हो, वो आपका अधिकार है कि आपको कर्म करना, सब व्यक्ति को अधिकार है कि उनको उनके जो गुण प्राप्त हैं भौतिक शक्ति भौतिक प्रकृति के सत्वगुण रजोगुण तमोगुण उसके अनुसार उनको एक प्रकार का कर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि इत्यादि वो कर्म करने का उनको मौका दिया जाए, सबको एंगेज किया जाए, सबको कार्य में लगाया जाए, ये सबका अधिकार है, अपने गुणों के अनुसार कार्य करने का अधिकार सबको है, लेकिन उस कार्य का जो फल होता है वो भोगने का अधिकार हमारा नहीं है। कर्म करने का अधिकार हमारा है लेकिन उसके जो फल बनता है उसके भोगने के अधिकारी हम नहीं है, वो फल भोगने का अधिकारी कोई और है, कौन है, वैसे भी हम अपने फलों को नहीं भोग पाते हैं, ज्यादातर भ्रम में रहते हैं, हम काम करते हैं तो फल तो परिवार के जन भोगते हैं या तो समाज के जन भोगते हैं, काम हम करते हैं लेकिन उसके फलों को हम वैसे भी नहीं भोगते हैं, कोई दूसरे ही भोगते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें हम अपना मानते हैं इसे जब वो भोगते हैं तो वो ऐसा ही है जैसे हमने भोगा, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। एक होता है बच्चा जब छोटा होता है तो सब कुछ खुद खाने की कोशिश करता है, ये पहली अवस्था होती है, जब थोड़ा बड़ा होता है तो अपने साथ साथ अपने भाई को भी देता है, जब और थोड़ा विकास होता है चेतना का तो फिर अपने माँ बाप को भी ध्यान रखता है, फिर और थोड़ा बड़ा होता है तो अपनी जाति का ध्यान रखता है, समाज का ध्यान रखता है, फिर और थोड़ा बड़ा होता है आगे चलता है तो देशवासियों का ध्यान रखता है, इस तरह से उसकी चेतना बढ़ती है, लेकिन इस हर चेतना में भावना है शरीर से संबंध, शरीर से संबंध है, मेरा भाई है मेरा शरीर से संबंध, मेरे माता पिता है, मेरा समाज, मेरा जाति, मेरा देश, शरीर से संबंध है। अगर देखिए कहीं मान लीजिए फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच चल रहा है तो कई बार क्या होता है, मान लीजिए अहमदाबाद है तो अहमदाबाद के अंदर अलग अलग ओढ़व है और यहाँ कुछ और है, तो हो सकता है ओढ़व की एक टीम हो और यहाँ की सेटेलाइट की एक टीम हो, तो जो सेटेलाइट के एरिया वाले होंगे वो अपने को संबंधित करेंगे कि ये हमारी टीम है, सेटेलाइट टीम हमारी है, और जब स्पर्धा होगी तो हम इसके लिए हैं, ये जीतनी चाहिए। फिर जब मान लीजिए अहमदाबाद और बड़ौदा का मैच हो रहा होगा तो फिर वो सब एक हो जाएंगे, हम सब अहमदाबाद वाले हैं, ये अहमदाबाद की टीम है। फिर और नेक्स्ट लेवल पे भारत और पाकिस्तान का होगा, ये भारत की टीम हमारी है। ऐसे हम हमेशा अपने को एक चीज से संबंधित करते हैं, शरीर के आधार पर ऐसे संबंधित हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चा भी अपने को इस प्रकार संबंधित करता है। तो इस प्रकार से हम ये एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन है कि मैं और ये मेरा, जो ये शरीर संबंधित है वो सब मेरा है। तो इस प्रकार से हमारी बुद्धि हमेशा इसमें लीन रहती है। तो लेकिन वास्तव में फल के भोक्ता हम नहीं हैं, फल के भोक्ता हैं जो सब चीज के स्वामी हैं, वो उस फल के भोक्ता है। अगर आप किसी कारपेंटर को नियुक्त करते हैं अपने यहां पर और उसको लकड़ी देते हैं और बोलते हैं ठीक है ये कुर्सी बनाओ, तो वो कुर्सी बनाता है, लेबर वर्क करता है, तो वो कुर्सी किसकी किसका अधिकार होता है कुर्सी के ऊपर, जो प्रोप्राइटर है उसका अधिकार होता है, ना कि जो लेबर करने वाला उसका अधिकार होता है। तो उसी प्रकार से हम जो भी कार्य कर रहे हैं तो जो रॉ मटेरियल है, जो सब संपत्ति है, फैक्ट्री में आप प्रोडक्शन कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो उसका जो कच्चा माल है वो क्या हमारी संपत्ति है, नहीं है, वो जो कच्चा माल है किसी भी कंपनी में किसी भी, वो सब तो प्रकृति से आया है। प्रकृति हमारी संपत्ति नहीं है, हमने नहीं बनाई प्रकृति की वो चीजें। किसने बनाई है? ये सब भगवान की संपत्ति है, उन्होंने बनाई। हाँ, हम तो केवल उसको उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे कारपेंटर काम करता है, वो संपत्ति हमारी नहीं है। इसीलिए हम उसके भोक्ता नहीं हैं, उसके भोक्ता उसके स्वामी हैं, संपत्ति के स्वामी हैं जो भगवान हैं। तो ये बहुत रिवॉल्यूशनरी आइडिया है, लेकिन अगर इस आइडिया को हम लोग धीरे धीरे समझ लेते हैं तो हमारा पूरा जीवन एक नया मोड़ लेगा और एक मिजरेबल लाइफ से एक दिव्य आनंद की तरफ हमारा जीवन मोड़ लेगा, यदि हम इस तथ्य को धीरे धीरे, ये थोड़ा अंदर सटकने में थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा कड़वा है, बहुत कड़वा है कि कर्म करो और जो फल है वो आप मत भोगो। तो भाई फल कैसे ये संभव है? कर्म करेंगे और फल हम नहीं भोगेंगे, तो ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन यही सच्चाई है। तो यहां भगवान कह रहे हैं आपको कर्म करने का अधिकार है लेकिन फल भोगने का अधिकार नहीं हो। यदि कोई व्यक्ति है, उसका कंपनी में लाखों रुपए का बिजनेस हो रहा है, प्रॉफिट लाखों रुपए का हो रहा है, तो वो लाखों रुपए का प्रॉफिट के भोगने के अधिकारी कौन है? वो मालिक नहीं है, परम मालिक है कृष्ण। यानी कि अपने कार्य के फलों को हमें भगवान को संतुष्ट करने में लगाना चाहिए, ना कि अपनी इंद्रियों को, या कि अपने परिवारजनों, या कि एक्सटेंडेड उनकी संतुष्टि के लिए। ऑफ कोर्स ये शरीर भी भगवान की देन है, जो भगवान की सेवा के लिए बना है, इसीलिए उसकी देखरेख के लिए जरूरी है कुछ लेना। तो जो भी कार्य का फल है उसे भगवान को अर्पित करके प्रसाद रूप में केवल जितना आवश्यक है उतना ही हम ले सकते हैं, जिससे कि हम सेवा कंटिन्यू कर सकें। कार को मेंटेनेंस चाहिए तो कार में उतना पेट्रोल डालना जरूरी है, तभी सब पुर्जे अच्छे चलेंगे। तो उसी प्रकार से शरीर की मेंटेनेंस सही है, लेकिन इसी हेतु से कि कैसे हम इस शरीर को भगवान की सेवा में लगा सकें, इस हेतु से। तो ये भगवान यहां कह रहे हैं, और फिर कह रहे हैं नहीं आप कर्म को ना करने में आसक्त हो। ऐसा भी नहीं कि मैं कर्तव्य नहीं करूंगा, जैसा अर्जुन सोच रहे थे कि ये बड़ा युद्ध करना पड़ेगा, अपने स्वजनों को मारना पड़ेगा, अच्छा है मैं युद्ध ही नहीं करूं। नहीं, अगर आपका जो कर्तव्य है उसे ना करना वो भी पाप है, वो करना ही होगा, वो करना ही होगा। तो इसलिए इस श्लोक के अंदर ये चीजें हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। तो भगवान की संतुष्टि के लिए ही हम केवल कार्य करें, और ना करना वो भी ऑप्शन नहीं है, काम करना है और उसको भगवान की संतुष्टि के लिए करना है। फिर भगवान बताते हैं कि जो ऐसा कार्य करना है वो है योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस श्लोक में पहली बार भगवान योग शब्द शुरू करते हैं बताना। योग, ये भगवद्गीता योग के लिए सबसे प्रामाणिक पुस्तक है पूरे संसार में। योग के विषय में यदि कोई प्रामाणिक पुस्तक है तो वो ये भगवद्गीता है। तो इन 18 अध्यायों के अध्ययन में हम वास्तव में योग क्या है, खुद भगवान श्री कृष्ण योग की व्याख्या क्या कर रहे हैं वो समझने जा रहे हैं। इट्स द बेस्ट स्टडी। तो भगवान कह रहे हैं इस भावना में जो हमने अभी डिस्क्राइब की, इस भावना में योगस्थः कुरु कर्माणि, कार्य को इस भावना में करो कि मैं अपने कर्तव्य जो भगवान का आदेश है उसके अनुसार कार्य करना मुझे है, लेकिन उस कार्य के फलों को मैं भोग नहीं करूंगा, वो कार्य के फल मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो ये इस भावना में कार्य करना उसे योग कहते हैं, क्योंकि वो कार्य करना हमें भगवान से जोड़ता है, वो लिंक्ड है, क्योंकि भगवान के आदेश के अनुसार भगवान की इच्छा के लिए कार्य हो रहा है, इसलिए उसे योग कहते हैं। दिस इज कर्म योग। कार्य करना है भगवान के आदेश के अनुसार भगवान की इच्छा के लिए, उस कार्य के फलों को भगवान की सेवा में नियोजित करना है। तो इस प्रकार से तुम कार्य करो, और जब इस प्रकार से कार्य करोगे सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा, विजय में और पराजय में संभाव रह कर करो। तो कई बार लोग बोलते हैं संभाव रहना चाहिए, सुख दुख में एक सा रहना चाहिए, लेकिन जब तक हम भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करेंगे, जब तक हमारा सेंट्रल पॉइंट भगवान की संतुष्टि नहीं है, तब तक हम कैसे संभाव रख सकते हैं? केवल मुंह से बोल सकते हैं सुख दुख में चिंता मत करो, लेकिन अगर हमारा हेतु फलों को भोग करना है तो हम कैसे संभाव रख सकते हैं? यह हिपोक्रिटिकल है, ये केवल मुंह से बोलने वाली बात है। बस सुख और दुख में एक सिर नहीं रह सकते। यदि आपका हेतु है कि जो फल मिलेगा मैं उसे एंजॉय करूंगा, तो फिर आप जब फल नहीं मिलेगा तो उससे दुखी हुए बिना कैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते। केवल जब आप जानते हैं स्पष्टतः कि जो भी फल है वो मुझे भगवान को समर्पित करना है, मुझे अपनी तरफ से कार्य बेस्ट पॉसिबल तरीके से करना है, ये मेरा कर्तव्य है, दैट्स इट, वो फलों को मुझे भोग नहीं करना है, तो फिर ऑटोमेटिकली हम संभाव में रह सकते हैं। जैसे कोई एक पुलिस ऑफिसर है, कोई लुटेरे बैंक लूट करके जा रहे हैं, तो वो जो है पकड़ता है उन लुटेरे को, मारता है और वो धन संपत्ति को बचाता है गवर्नमेंट की, तो उसको जो धन संपत्ति मिली उसे पता है कि इसको मैं अपनी जेब में नहीं रखने वाला, चोरों को पकड़ने के बाद ये मेरी संपत्ति नहीं है, ये गवर्नमेंट की संपत्ति है, इसीलिए उस कार्य को करने में वो उस धन संपत्ति से इसको भोगने के लिए लगाव नहीं रखेगा, ठीक है, उससे लगाव नहीं रखेगा, या उसको लेते हुए, उसको प्राप्त धन संपत्ति को लेते हुए यदि कुछ दिक्कतें आ रही हैं रास्ते में, परेशानी, तो भी उसको वो कष्ट से संबंध नहीं है, उसकी संतुष्टि है कि मैंने अपना कर्तव्य अच्छे से निभाया, इसी में उसकी संतुष्टि है। तो इस दृष्टि से काम करते हुए हम संभाव रख सकते हैं, अन्यथा नहीं रख सकते हैं। तो आप सबके मन में थोड़ा हो सकता है ऐसा प्रश्न आ रहा हो कि ये बड़ा ही ऐसा ऑप्शन लगता है जो कि नामुमकिन सा लगता है कि केवल हम भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करें, अपने लिए कुछ नहीं करें, तो फिर क्या मोटिवेशन होगा काम करने के पीछे? हर चीज के पीछे एक मोटिवेशन चाहिए ना, कुछ मोटिवेशन चाहिए काम करने के पीछे, कुछ लगाव, क्या किस लिए काम करें वो चाहिए। तो जनरली सबके पीछे मोटिवेशन क्या होता है? काम के फल, काम करूंगा, मेहनत करूंगा सुबह से और फिर रात शाम, एक महीने बाद क्या मिलेगी? पगार मिलेगी और फिर उससे मैं एंजॉय करूंगा, ये लाऊंगा वो लाऊंगा, घर में बहुत सारी चीजें, तो ये मोटिवेशन रहता है, इसलिए हम बहुत मेहनत करते हैं। तो फिर यदि हम जान जाएं कि कर्म के फलों को मुझे नहीं भोगना है, वो सब भगवान को देना है, तो फिर मोटिवेशन क्या रहेगा? क्यों फिर कोई काम करेगा? तो मोटिवेशन, वास्तविक मोटिवेशन है भगवान की निस्वार्थ भाव से सेवा करने में जो आनंद आता है, वो रियल मोटिवेशन है, जो योगी का मोटिवेशन है। तो हर एक सेवा में एक आनंद छुपा होता है जिससे हम वो सेवा करते हैं, भले उस सेवा करने में हमें कितने भी दुख क्यों ना हो। तो आप देखिए, माँ बाप बच्चे का लालन पोषण करते हैं, बच्चा कितना उसका लालन पालन करने में बड़ा कष्ट लेना पड़ता है, माँ बाप को बहुत कष्ट लेना पड़ता है, तो फिर क्यों करते हैं लालन पालन? क्योंकि वो जो सेवा है उसमें एक प्रकार का आनंद छुपा है जिससे वो सेवा करने के लिए हम प्रेरित रहते हैं। एक देशभक्त अपने देश को बचाने के लिए अपने प्राण तक निछावर कर देता है, इतना तगड़ा कष्ट लेता है, इतना बड़ा कष्ट कि खुद भी मर जाने को सुखी आनंद पूर्वक मर जाता है, सैक्रिफाइस करता है, इतना कष्ट लेता है, लेकिन ये कष्ट उसको कष्ट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसको वो जो सेवा है उसमें एक शरीर के कष्ट से भी अधिक सुख मिल रहा है, जिसकी वजह से ये शरीर मरने का कष्ट भी उसके लिए नगण्य हो जाता है, समझ रहे हैं? तो हर सेवा में एक आनंद छुपा है जिससे हम वो सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने परिवारजनों की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं, लेकिन ये सब सेवाओं के जो ऑब्जेक्ट हैं वो परफेक्ट नहीं है, वो आत्मा के संबंध में नहीं है, वो इम्परफेक्ट है, इसलिए वो जो आनंद हमें मिलता है सेवा का आनंद, वो क्षणिक होता है, इम्परफेक्ट होता है, इसलिए वो हमें पूर्ण संतुष्ट नहीं कर पाता, इसलिए वो सेवा किसी ना किसी स्टेज में आकर के रुक जाती है। विवाह होता है, पति पत्नी एक साथ रहते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद लगता है नहीं 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 मेरी संतुष्टि इससे इस सेवा करने से नहीं, इम्परफेक्ट है ये, मेरा पार्टनर जो है वो इम्परफेक्ट है, तो फिर डाइवोर्स हो जाता है। इस प्रकार से हर सेवा में कमियां होती हैं, इम्परफेक्ट होती हैं। तो वास्तव में भगवान वो परफेक्ट ऑब्जेक्ट हैं हमारी सेवा के, जिनकी सेवा करने से येन आत्मा सुप्रसिद्धति, जिससे आत्मा संपूर्ण रूप से प्रसन्न हो, वो सेवा है केवल भगवान की सेवा। इसके अलावा बाकी सब सेवा वो परफेक्ट नहीं है, इसलिए वो कभी हमें संतुष्ट नहीं कर सकती हैं। तो इसीलिए जो योगी है वो इस तथ्य को जानता है और धीरे धीरे भगवान की सेवा करने से वो अनुभव करता है कि भगवान की सेवा करने में जो सुख है वो दिव्य है। ये भोग करने में सुख नहीं है, दुख है, अंततः केवल भ्रमित करने वाला सुख है। इसीलिए वो ये फलों की को भोग करने की इच्छा से धीरे धीरे बाहर निकल करके पूरी तरह से भगवान की सेवा करने के लिए तैयार होता है। तो ये शिक्षा यहां पर भगवान दे रहे हैं कि ये योग है, योग में स्थित होकर केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य करना, ये योग है। फिर भगवान बताते हैं, इस प्रकार से बुद्धियुक्ता जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात योगायुजस्व योग कर्म सुकौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है, अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। आर्ट ऑफ वर्किंग, योग कर्म सुकौशलम, योग कर्म करने की कला है। योग मतलब वो कॉन्शियसनेस, किस चेतना में कार्य किया जाए जिससे कि हमारा संबंध भगवान के साथ जुड़ सके। तो वो योग करने की कला भगवान बता रहे हैं कि आप बुद्धि योग में स्थित होकर, यानी कि भगवद गीता के ज्ञान में स्थित होकर, भगवान के हम दास हैं इस ज्ञान में स्थित होकर, जब हम अच्छे और बुरे परिणाम दोनों को छोड़ देते हैं और केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य करते हैं, तब हम योग में स्थित होते हैं। तो सामान्यतया हम बुरे कर्म, यानी ऐसे कर्म जिनका फल कड़वा होता है, उसे नहीं करना चाहते हैं, उससे बचते हैं, और जिन कर्मों का फल मीठा होता है उसे करते हैं। इस प्रकार से इसे कहते हैं पुण्य कर्म। तो एक है विकर्म और एक है पुण्य कर्म। विकर्म है शास्त्र के विरुद्ध कार्य करना, जिसका परिणाम क्या होता है, जिसे हम पाप कहते हैं। विकर्म मतलब पाप, यानी शास्त्र के निर्देश के विरुद्ध कार्य करना। तो पाप कर्मों का फल कैसा होता है, मीठा ही कड़वा, कड़वा होता है। उसका परिणाम होता है कि हमें भौतिक दुख मिलता है, पनिशमेंट मिलता है प्रकृति के द्वारा। और पुण्य कर्म मतलब शास्त्र के अनुसार कार्य करना, जिससे हमें भौतिक सुख मिले, जैसे कुएं खुदवाना, दान दक्षिणा देना, ज्ञान के लिए देना, और अनाथ आश्रम खुलवाना, ये सब पुण्य कर्म। ये सब पुण्य कर्म करने से हमें इस जीवन में और आने वाले जीवन में बहुत सारा भौतिक सुख मिलता है। यदि हम दान देते हैं तो उसका कई गुना धन संपत्ति हमें मिलता है। यदि हम किसी को ज्ञान देते हैं तो हम आने वाले समय में जीवन में बहुत ज्ञानवान होते हैं। ये सब कैलकुलेशन है शास्त्र के अनुसार। तो ये सब कैलकुलेशन किसके लिए है, पुण्य कर्म के लिए है। लेकिन भगवान यहां कह रहे हैं ये पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों से ऊपर उठना है, इसे योग कहते हैं। ये रिवॉल्यूशनरी है। सामान्यतः तुम सुनते आए कि पाप कर्म मत करो, लेकिन भगवान कह रहे हैं पाप कर्म भी मत करो और पुण्य कर्म भी मत करो, दोनों ही मत करो। तो फिर क्या करें, शिथिल हो जाएं, कुछ भी नहीं करें? नहीं, वो तो पहले मना कर चुके हैं कि कर्तव्य नहीं करना, वो ऑप्शन नहीं है। तो फिर पाप कर्म भी नहीं करना है, पुण्य कर्म भी नहीं करना है, तो क्या करना है? तो भगवान की सेवा करनी है, ना तो पाप कर्म करना है ना तो पुण्य कर्म करना है। तो पाप कर्म करने से भौतिक दुख मिलता है और पुण्य कर्म करने से भौतिक सुख मिलता है, जो अंततः दुखी है। क्यों? क्योंकि भौतिक सुख मिलेगा तो उसको उसको उस फल को भोगने के लिए कोई ना कोई शरीर तो लेना पड़ेगा। अच्छा काम करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे तो आने वाले जीवन में देवताओं का शरीर मिलेगा, अच्छे घर में जन्म मिलेगा, अमीर परिवार में जन्म मिलेगा, या देवताओं का के परिवार में जन्म मिलेगा। लेकिन जन्म तो लेना पड़ेगा, देह बंधन में तो आएंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में तो फंसे रहेंगे, तो वो तो सबसे बड़ा दुख है। तो अंततः ये रिलेटिव सुख है, सापेक्षित सुख दुख है। जैसे कोई आदमी यदि जेल में है तो जेल में भी अलग अलग डिपार्टमेंट वो होते हैं, कैटेगरीज होते हैं, वीआईपी जेल, ऑर्डिनरी जेल। तो अगर कोई आदमी ऑर्डिनरी जेल में है और राष्ट्रपति आए वहां पर जेल में कभी और बोले आज स्पेशल है, आज आपकी जो इच्छा है आप मांग सकते हैं, आज के लिए एक स्पेशल डे। तो कैदी मांगते हैं, ये ऑर्डिनरी जेल में पड़े हुए हैं, पास में वो वीआईपी जेल है वहां डाल दो हमको आप। तो ये बहुत अच्छा इंटेलिजेंट ऑप्शन है। राष्ट्रपति आज आपको जो कुछ मांगो देने के लिए तैयार है। अगर आप उससे मांगो कि हमें रिहा कर दो तो आज आपको रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं मांग करके हम मांगते हैं हमें वीआईपी जेल में डाल दो ऑर्डिनरी जेल से। तो रिलेटिवली आप अच्छी पोजीशन में आ गए, अभी वीआईपी जेल में आ गए, अभी वहां पर टीवी है देखने के लिए, शायद एसी भी है, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं लेकिन है तो जेल ही। आप जेल में रहने के लिए निमित्त नहीं है, आपका आपकी योग्यता है कि आप जेल से मुक्त हो, वो आप मांग सकते थे, वो आपका अधिकार है, लेकिन उसकी जगह आपने मांगा मुझे वीआईपी जेल दे दो। लोहे की जंजीर है, लोहे की जंजीर की जगह सोने की जंजीरें बांधो। जंजीर जंजीर है, चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, जंजीर तो जंजीर है, काम तो उसका वही है जंजीर बांधना। तो इसीलिए पाप कर्म ना करके पुण्य कर्म करना क्या है, ऑर्डिनरी जेल से वीआईपी जेल में जाने का प्रयास है। तो ये विकर्म और अच्छे कर्म का कहानी है। इसलिए भगवान कह रहे हैं नहीं, आप दोनों से ऊपर उठो, आप ऐसा काम करो, ऐसा कार्य करो जिसका कोई प्रतिफल नहीं बने, ना अच्छा ना बुरा, जिसका कोई रिएक्शन नहीं बने, क्योंकि कर्म फल बनेगा तो उसको भुगतने के लिए बार बार शरीर लेना पड़ेगा। अच्छा कर्म फल होगा तो अच्छा शरीर मिलेगा, बुरा कर्म फल होगा तो बुरा शरीर होगा, लेकिन शरीर तो होगा, और शरीर होना ही तो सबसे बड़ी बीमारी है, वही तो हमारा सबसे बड़ा बंधन है, क्योंकि हम निमित्त हैं भगवान के धाम में, भगवान की सेवा करने के लिए, करने के लिए और नित्य रूप से वहां रहने के लिए, जन बंधन से मुक्त होकर के। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा यहां पर भगवान दे रहे हैं, क्योंकि दूसरा अध्याय पूरी भगवद्गीता का सार है, इसलिए इसमें जो हम आगे देखने जा रहे हैं उसको पूरा सार रूप में यहां पर प्रेजेंट किया हुआ है, इसी को हम और विस्तार से देखेंगे आगे। तो भगवान इसको यहां पर बता रहे हैं कि इस प्रकार से आप बुद्धि से, बुद्धि में युक्त होकर अर्थात मेरे आदेश के अनुसार कार्य करो। अगर आप मेरे आदेश के अनुसार कार्य करोगे, मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे, तो ना तो उसका अच्छा फल बनेगा ना उसका बुरा फल बनेगा, बल्कि उसका कोई फल नहीं बनेगा, आपके कर्म के फलों से आप मुक्त होगे और मेरी प्रेम भक्ति प्राप्त करोगे, मेरे भक्त बनोगे, मेरे प्रति प्रेम जागृत करोगे, और उसका परिणाम क्या होगा वो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं। उसका परिणाम क्या होगा, भगवान कहते हैं कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। इस तरह मतलब अभी तक जो बताया उस तरह, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो यह श्लोक भगवद्गीता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है, जिसमें पूरे भगवद्गीता के सार जो है उसको व्यक्त किया गया है कि कर्मजम, कर्मजम मतलब कर्म से उत्पन्न होने वाले, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम, कौन से फल, जो कर्म से उत्पन्न होने वाले फल हैं उनको बुद्धि से, बुद्धि युक्त वो बुद्धि जो भगवान के साथ लिंक्ड है, अर्थात भगवान के आदेश के अनुसार भगवान की सेवा के लिए कार्य करने वाली जो बुद्धि है उसमें रत रहकर उन फलों को त्यक्त्वा छोड़ करके, मनीषिणः जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो भक्त हैं, जन्म बंध विनिर्मुक्ता जन्म बंधन से मुक्त होकर के, जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम स्थिति गच्छन्ति जाते हैं अनामयम, अनामयम मतलब जहां कोई कष्ट नहीं है, ऐसे स्थान को प्राप्त करते हैं। उस स्थान का नाम है वैकुंठ। जैसा हमने चार दिन के अपना जो सेशन था उसमें बताया था वैकुंठ का शाब्दिक अर्थ क्या है, कोई बताएंगे आप में से, याद है वैकुंठ, वैकुंठ का मतलब क्या है? हाँ जी, नहीं मतलब वैकुंठ ये शब्द शाब्दिक अर्थ क्या है इसका, लिटरल मीनिंग वैकुंठ, एनीबडी?
श्री कृष्ण वहां पे निवास करते
हैं, दैट्स करेक्ट, लेकिन इसका लिटरल मीनिंग क्या है?
ऑपुलेंस ऐश्वर्य कृष्ण,
नहीं एनीबडी, स्वर्ग लोक
जन्म मरण नहीं होता
है, वो सब आपके पास सही है, जन्म मरण नहीं होता है, लेकिन वैकुंठ का मतलब है वैकुंठ। कुंठ मीन कुंठा मीन्स कुंठा, कुंठा मतलब चिंताएं, कुंठा मतलब चिंताएं, और वैकुंठ मीन्स ऐसा स्थान जहां पर चिंताएं नहीं है, चिंता रहित स्थान। और ये स्थान कैसा है? चिंता युक्त स्थान। सब एग्री करेंगे हर क्षण हर समय चिंता ही चिंता, आदमी को भी चिंता, पक्षी को भी चिंता, सबको चिंता। पक्षी भी दाना खाता है तो चिंता है, कोई पकड़ तो नहीं लेगा, कोई मार तो नहीं देगा, सबको चिंता है, खा भी नहीं सकते शांति से। और हमको भी हमेशा सुबह से उठते ही आज ये प्रॉब्लम है, अभी आज फैक्ट्री में ये है, आज जॉब में ये प्रॉब्लम है, ये टारगेट अचीव करना नहीं हुआ तो क्या होगा, निकाल देंगे, ये होगा, कंपनी बंद होने वाली है, हजार प्रकार की चिंताएं हैं, हजार, कोई इसकी सीमा नहीं है। तो भगवान देखिए इतना महत्वपूर्ण चीज हमको बता रहे हैं कि यदि आप मेरे इंस्ट्रक्शन के अनुसार काम करोगे, जैसा मैं बता रहा हूं, बुद्धि योग में स्थित होकर कार्य करोगे यदि आप, तो क्या परिणाम होगा कि आप इस कुंठायुक्त जगत से निकल करके वैकुंठ जाओगे, मेरे धाम आओगे जहां पर कुंठा नहीं है, तो वहां कोई चिंता का विषय नहीं है। चिंता हमको क्यों है? क्योंकि हम अस्वाभाविक स्थिति में हैं। जब हम आप में से कई लोग बाय एयर ट्रेवल किए होंगे या शिप में ट्रेवल किए होंगे, तो जब हम जहाज में, पानी के जहाज में होते हैं या हवाई जहाज में होते हैं और अभी हम यहां बैठे हैं, उन दोनों स्थिति में क्या अंतर होता है? वी आर कंफर्टेबल। और हवाई जहाज में बैठेंगे चाहे भले ही यू नो बेस्ट फ्लाइट लिए हैं, लेकिन अंदर धुक धुक रहता है, अगर ये क्रैश हो गया तो क्या होगा, अगर पानी के जहाज में बैठे तो भी, अगर ये तूफान आ गया तो क्या होगा। लेकिन अभी ये जो पक्षी ऊपर उड़ते हैं आकाश में और जो मछली पानी में रहती है, उनको ऐसा लगता है नहीं होगा, तो ये डिफरेंस क्यों है? यस, क्योंकि पक्षी की स्वाभाविक स्थिति है हवा में रहना, हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है हवा में उड़ना, वो अस्वाभाविक स्थिति है। उसी प्रकार से पानी में, वो भी हमारी स्वाभाविक स्थिति है, लेकिन जमीन पर हम रिलेटिवली वी आर कंफर्टेबल, क्योंकि ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। तो इसीलिए जब हम अपनी अस्वाभाविक स्थिति में होते हैं तब हम कुंठा से युक्त होते हैं, और जब अपनी स्वाभाविक स्थिति में होते हैं तो कंफर्टेबल होते हैं। तो हम यहां पर इस भौतिक जगत में अनकंफर्टेबल क्यों है? अल्टीमेटली रूट कॉज क्या है? क्योंकि हम हैं तो आत्मा जिसका कोई मरण नहीं होता, जिसका कोई जन्म नहीं होता, जिसको कोई बीमारी नहीं होती, जिसको जॉब की चिंता नहीं होती, जिसको परिवार को पालने की चिंता नहीं होती, ये सब चिंताएं जिसको नहीं होती, जो भगवान शाश्वत रूप से भगवान के धाम में भगवान की सेवा में रहकर नित्य आनंद से रहता है। भगवान के धाम में वो जो सेवा करते हैं वहां पर वो टेंशन नहीं है कि अगर भगवान की कंपनी है, जॉब कर रहा हूं, कंपनी नहीं चली तो क्या होगा, वहां कंपनी नहीं चलने का कोई प्रश्न नहीं है। भगवान की सेवा, भगवत धाम में कोई कमियां होने का कोई प्रश्न नहीं है, वहां कोई कंपटीशन नहीं है। यहां तो एक कंपनी का दूसरी कंपनी से कंपटीशन है लेकिन वहां पर कोई कंपटीशन नहीं है, इसलिए वहां पर इस प्रकार की कोई कुंठा नहीं है। तो कुंठाओं का कारण है कि हम अपनी अस्वाभाविक स्थिति में हैं, तो हम भगवान के दास लेकिन सोच रहे हैं अपने को भोक्ता, ये हमारी कुंठाओं का कारण है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि यदि आप मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे केवल, तो फिर उसका कोई कर्म का फल नहीं बनेगा, और जब कर्म का फल नहीं बनेगा तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो ये कर्म फल में बंधना, जिसे कर्म बंधन कहते हैं, हम सब बात सुनते हैं ये कर्म बंधन का मतलब क्या है? जो भी कार्य हम इस शरीर के संबंध में करते हैं, इंद्रिय सुख के लिए करते हैं, उसका कोई ना कोई फल बनता है, अच्छा या बुरा, और वो बनते ही उसको भोगने के लिए हमें कोई ना कोई जन्म लेना पड़ता ही है, और इससे हमारा, इसे कर्म बंधन कहते हैं, यानी वो कर्म जो हमें इस भौतिक जगत में बांधता है, जन्म मृत्यु के चक्र में बांधता है, वो कर्म बंधन है। तो इसी समय में भी जो हमारे मन के अंदर बहुत सारी इच्छाएं और बहुत सारे हमने कार्य किए हैं अभी तक, आगे आने वाले कई सौ जीवन, कई सौ शरीर ऑलरेडी निर्मित हो चुके हैं माइंड के अंदर, ऑलरेडी कई सारे, जैसे आर्किटेक्ट है, बहुत सारे बिल्डिंग्स का डिजाइन, एक बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग, एक जो है फाउंडेशन की स्टेज में है, दूसरी बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर स्लैब की स्टेज में है, तीसरी कोई बिल्डिंग सेकंड फ्लोर स्लैब की स्टेज में है, है, और फिर और बहुत सारी बिल्डिंग अभी केवल पेपर पे हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस पर हैं। उसी प्रकार से हमारे इस समय बहुत सारे स्टेजेस में नेक्स्ट बॉडीज ऑलरेडी बन रही, माइंड के अंदर है, तो शरीर खत्म होते ही नेक्स्ट, और फिर उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे हम ऑलरेडी फंसे हुए हैं तन बंधन। तो भगवत गीता वो ज्ञान है जिससे हम इस कर्म बंधन से निकल सकते हैं, क्योंकि भगवत धाम जाने के लिए कर्म बंधन से मुक्त होना जरूरी है। जब तक इसमें फंसे हुए हैं, जब तक जेल में हैं, तब तक मुक्त कैसे हो सकते हैं? तो इसीलिए ये भगवत गीता का ज्ञान का जो अनुशीलन करता है, जो भगवत गीता के अनुसार जीवन जीता है, धीरे धीरे वो इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अंततः भगवान अंतिम भगवत गीता के अंतिम श्लोक में क्या कहेंगे, भगवान इसका पूरा निचोड़ निकालेंगे भगवत गीता का, उसका सार कहेंगे, परम गुह्य तमम ज्ञानम, सबसे मेरा गुह्य ज्ञान ये है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर आप पूरी तरह से मेरी शरण में लोगे, यानी जो भगवान यह कह रहे हैं, केवल मेरी संतुष्टि के लिए कार्य करोगे, तो मैं आपको जितने भी आपके संचित कर्म का फल है ऑलरेडी स्टॉक में, वो सबको जीरो कर दूंगा। अगर प्रेसिडेंट आ जाए, किसी आदमी की किसी का कैद 2 साल है, किसी की आजीवन कैद है, कुछ भी है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे सो ही कैन फ्री, उसको छोड़ सकता है, छोड़ दो उसको, फांसी से या तो भी छोड़ सकता है। तो उस प्रकार से यदि हम भगवान की पूर्ण शरणागति लेते हैं, तो जितने भी हमारे संचित कर्म फल हैं, जिसकी वजह से हमें शायद नरक में जाना पड़ता होता, शायद 100-100 जन्म लेने पड़ते होते, वो सब के सब जीरो हो सकते हैं, होते हैं। इसी वजह से हम तुरंत इस जीवन के बाद भगवत धाम जाते हैं, बल्कि इसी जीवन में भगवान की शुद्ध भक्ति का अनुभव कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। तो इस प्रकार से ये बुद्धि योग है, अर्थात कर्म करने की कला है, जो भगवान सिखा रहे हैं। अभी फिर भगवान इसके कुछ महत्वपूर्ण गुण बता रहे हैं कि जो बुद्धि योग में जो काम करता है व्यक्ति, उसको सबसे पहले तो जो भी वो प्रगति करता है वो कभी फेल नहीं होती, वो निष्फल नहीं होती। अगर सिद्धि प्राप्त किया तो परिणाम होगा मेरे धाम आएगा, जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इस जीवन में हमने सिद्धि प्राप्त नहीं की, पूरा प्रोसेस आगे तक नहीं जा पाए, कंप्लीट नहीं कर पाए प्रोसेस, तो फिर क्या होगा हमारा? क्या ये जितनी प्रगति की सब बेकार जाएगी? एक हम लोग एग्जाम में बैठते हैं, 1 साल तक पूरे पढ़ाई किया, मेहनत किया, लेकिन जिस दिन एग्जाम था उस दिन तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल भर्ती हो गए, तो वो पूरा साल क्या होता है? बेकार हो जाता है। अगर फाइनल अगर भौतिक कार्य में कोई भी काम जब तक पूरा नहीं हो, तब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। घर की दीवारें बन गई, सब बन गई, स्लैब नहीं डली, नहीं रह सकते घर में, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक काम नहीं हो सकता। तो ये भौतिक जगत में जो कार्य है वो ऐसा होता है, जब तक पूरा ना हो तब तक उसका कोई फल नहीं मिलता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये जो बुद्धि योग है, जो भक्ति है, इसमें आप थोड़ी सी भी जो कार्य करते हो, अगर आपने इस जीवन में 1% प्रोग्रेस की है, तो नेक्स्ट लाइफ में वो आपके साथ आएगी और आप 2% से शुरू करोगे, वो खत्म नहीं होगी। भले ही आप पूरी नहीं कर पाए तो भी वो वेस्ट नहीं जाएगी। तो कितना सुंदर चीज है, ऐसा नहीं होगा कि अगर परफेक्शन नहीं हुआ तो बेकार, फिर अगली नेक्स्ट जीवन में फिर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। इस जीवन में हम PhD करते हैं और नेक्स्ट लाइफ में फिर दोबारा से ABCD से शुरू करना पड़ता है, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में हम जितनी प्रगति करेंगे वो कभी नाश नहीं होगी। इसलिए कितना सुंदर चीज है कि चिंता की कोई बात नहीं है, आप पूरे विश्वास से आप करते जाइए, वो फेल नहीं होगा, वो कभी निष्फल नहीं जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति सिंसियरली थोड़ी भक्ति भी करता है, वो महान भय से मुक्त हो जाता है। महान जीवन का सबसे बड़ा महान भय उससे मुक्त हो जाता है, अगर थोड़ी भी सिंसियरिटी से वो भगवान की शरण लेता है। तो क्या है सबसे महान भय मनुष्य जीवन के अंदर? मृत्यु तो है, लेकिन अगर मृत्यु के बाद भगवत धाम जा रहे हो तो वो क्या भय है? वो तो बड़ा अच्छा है अगर मृत्यु के बाद भगवत धाम जा रहे हो, लेकिन अगर मृत्यु के बाद पशु बन रहे हो तो बहुत मुश्किल है। तो फिर भगवत चेतना खत्म, इससे जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का चांस, फिर ना जाने कितने जन्मों बाद फिर दोबारा से साइकिल मारने मिलेगा। तो इसलिए बड़ा भय है यदि मनुष्य जीवन के बाद दोबारा पशु मिल गया। तो इसलिए जिस व्यक्ति ने भक्ति में थोड़ी सी प्रगति, थोड़ी सिंसियरिटी से प्रगति की है, कम से कम उसे नेक्स्ट लाइफ मनुष्य जीवन तो मिलेगा ही मिलेगा। इतना सुंदर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में ही संभव है भक्ति करना। तो जिसने 1% की है उसे 2% करने का चांस मिलेगा, तो 2% का चांस मिलेगा मतलब उसे कम से कम मनुष्य जीवन मिलेगा। जितनी अच्छी प्रगति की है उतने अच्छा चांस मिलेगा, उसके ऐसे परिवार में जन्म होगा जिसको उसे भक्ति करने की अधिक अच्छा फेवरेबल एनवायरमेंट मिलेगा। भगवान आगे चल के बताते हैं, जो योगी होते हैं जो बहुत अच्छी प्रगति करते हैं लेकिन थोड़ा रह जाते हैं, उनको भक्तों के परिवार में जन्म मिलता है, महान योगियों के परिवार में जन्म मिलता है, जिससे बचपन से ही उनको ऐसा वातावरण मिलता है, खुद माँ बाप उनको प्रेरित करते हैं भक्ति में, तो ऐसा जीवन। तो इसलिए इसमें कोई लॉस नहीं है, केवल फायदा ही फायदा है, ओनली प्रॉफिट। आजकल हम सब यही चीज चाहते हैं ना, जिसमें केवल फायदा ही फायदा। तो ये है वो वास्तविक चीज जिसमें केवल फायदा ही फायदा है, पांचों उंगली घी में है, इज नो लॉस एट ऑल। यस, सो कैरी फॉरवर्ड, हमेशा केवल फायदा ही फायदा है, ये कैरी फॉरवर्ड होती है, कभी वेस्ट नहीं होती है। तो ये इसकी एक योग्यता है, महत्वपूर्णता है। फिर भगवान कह रहे हैं एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, व्यवसायात्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदना बहुशाखा अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। जो इस प्रकार से बुद्धि योग में स्थित होते हैं, जो इस प्रकार से मेरे से लिंक्ड होते हैं, मेरे आदेश के अनुसार कार्य करते हैं, तो उनकी जो बुद्धि होती है वो एक निष्ठ होती है, सिंगल पॉइंटेड। और जिनकी बुद्धि मेरे से युक्त नहीं है उनकी बुद्धि बहु शाखाओं में विभाजित होती है। तो अभी इसको कैसे समझ सकते हैं? तो सामान्यतया हम लोग हमेशा जीवन में एक बैलेंस करने का ट्राई करते रहते हैं, परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारियां, जॉब की जिम्मेदारियां, मेरे अपने जीवन में भक्ति भगवान के प्रति भगवद गीता की जिम्मेदारियां समझने की, उसको बहुत सारे अलग अलग हमारे डायमेंशंस हैं जीवन में, बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स हैं, और हमेशा एक बड़ा चैलेंज रहता है हाउ टू मेक ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। व्हाट इज अ परफेक्ट बैलेंस, कितना भौतिक जीवन होना चाहिए, कितना आध्यात्मिक होना चाहिए। तो इस सब में हम लोग अलग अलग सुनते रहते हैं, आध्यात्मिक जीवन सुबह को 10 मिनट करो बस, कोई बोलता है नहीं नहीं 1 घंटा करो, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के हम मंतव्य रखते रहते हैं। तो क्या है परफेक्ट बैलेंस, व्हाट इज अ परफेक्ट बैलेंस, कितना परसेंट भौतिक जीवन होना चाहिए और कितना परसेंट आध्यात्मिक जीवन होना चाहिए? हाँ जी, 10 कौन सा? 10 आध्यात्मिक और 90 भौतिक। अच्छा, और हाँ जी, मैक्सिमम मतलब 100 होना चाहिए फिर, मैक्सिमम तो 100 ही है, मैक्सिमम इज 100। और कोई? हाँ जी, हाँ जी, दोनों 100% होना चाहिए। दोनों 100% तभी हो सकता है जब दोनों एक ही चीज हो। करेक्ट, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा आप उल्टा कह रहे हो, 90/10 कह रहे हैं, तो देखा ना कंफ्यूजन है ना। हाँ, तो अगर हम 5 स्टार जाके एंजॉय कर रहे हैं तो भी भगवान का नाम लेके जाना चाहिए, और वहां पर वो भी अच्छा। तो क्या ये जैसे आप उन्होंने कहा मन से करना चाहिए, यानी कि मतलब काम सब वही करो, भौतिक सब वो जो भी आप कर रहे हो जो भी आसक्ति है, लेकिन मन से मानो कि मैं ये सब भगवान के लिए कर रहा हूं। अगर मैं खूब अच्छा खा रहा हूं, खूब एंजॉय कर रहा हूं, तो बस मन से मानो कि ये सब मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। क्या ये इसका मतलब है? हम खूब एंजॉय करें, सब कुछ करें, लेकिन केवल मन से मान लें कि ये सब भगवान के लिए कर रहा हूं, क्योंकि भगवान चाह तो यस, व्हाट इज द परफेक्ट बैलेंस। सो यहां पर भगवान कह रहे हैं परफेक्ट बैलेंस इज एक है कुरु नंदन, जो व्यक्ति मेरे में युक्त है मेरे, तो उसकी सिंगल पॉइंटेड, उसका जीवन में एक ही काम होता है। ही हैज गॉट नॉट टू वर्ल्ड्स टू बैलेंस, He has only one thing to do. Therefore, there is no question of balance. Balance करने का प्रश्न ही नहीं है। जो व्यक्ति समझता है भगवद्गीता को, उसके दो जीवन के आयाम नहीं है, भौतिक और आध्यात्मिक। उसके जीवन के दो आयाम नहीं है, उसके जीवन का केवल एक ही आयाम है, भक्ति। वो जानता है कि भक्ति ही एकमात्र एक चीज है जो करने योग्य है, अर्थात भगवान के आदेश का पालन करना। और उसे पूरा विश्वास है कि यदि मैं भगवान के आदेश का पालन करूंगा तो उसमें किसी भी स्फेयर में त्रुटि होने की आवश्यक गुंजाइश नहीं है। तो आप सोचिए, यदि हम भगवान के आदेश का पालन करेंगे तो क्या जो हमारी परिवार के प्रति जिम्मेदारियां, समाज या जो भी है, क्या भगवान का आदेश उनके संबंध में नहीं होगा? भगवान तो सभी चीज के उद्गम हैं, सब कुछ सिखाने वाले हैं, सब कुछ बताने वाले हैं, सब कुछ तो उन्हीं के आदेश के अनुसार, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ उन्हीं के लिए बनाया है। तो क्या भगवान का आदेश, भगवान का ऑर्डर क्या इम्परफेक्ट हो सकता है? कि भगवान का आदेश पालेंगे, वो भक्ति करेंगे 10%, लेकिन 90% अपने हिसाब से काम करेंगे। यानी कि भगवान की इंस्ट्रक्शंस 10% सही हो सकती हैं, लेकिन बाकी हमको अपने हिसाब से करना होगा? नहीं। तो वास्तविकता यह है, समझ वाली बात यह है, श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण कर्म कैला सर्व कर्म कृत होए। भगवान इस सबके आदि हैं और मैं उनका दास हूं, वो मेरे परम हितैषी हैं। इसलिए यदि वो मेरे परम हितैषी हैं तो यदि मैं 100% उनकी इच्छा से काम कर रहा हूं तो उसमें किसी भी डायमेंशन में कोई त्रुटि या कोई कमी कैसे आ सकती है? क्योंकि भगवान इम्परफेक्ट नहीं है, भगवान परफेक्ट हैं, तो उनकी इंस्ट्रक्शंस भी परफेक्ट हैं। इसलिए उनकी इंस्ट्रक्शंस के अलावा और कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। वो हम सबके परम हितैषी हैं एंड ही नोज एवरीथिंग, एंड ही, ये भौतिक जगत बनाने वाले भी वही हैं, तो वो जानते हैं कि इस भौतिक जगत में हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो इसलिए हमें और कोई दूसरी चिंता का विषय करने की जरूरत नहीं है, केवल 100% भगवान का सुनने की जरूरत है हर विषय में। तो अभी ये विश्वास जो है, ये बुद्धि योग का विश्वास है। अर्थात अभी परिवारजन के प्रति हमारे जिम्मेदारियां, तो ये पारिवारिक जिम्मेदारियां और ये जो सब नियम हैं, ये भी भगवान के द्वारा शास्त्रों के अंदर उल्लेखित हैं कि अलग अलग संस्कार, विवाह संस्कार, माता पिता सबकी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए, है ना। तो भगवान के इंस्ट्रक्शंस केवल आत्मा के ही स्तर पर नहीं है, वो शरीर के स्तर पर भी है, क्योंकि वर्तमान में हम एक शरीर में घिरे हैं। तो ऑब्वियसली भगवान शरीर के विषय में इंस्ट्रक्शंस नहीं दें तो फिर तो इम्परफेक्ट इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगी। करेक्ट। इसलिए हम देखते हैं भगवद गीता में भगवान जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, भगवान बात कर रहे हैं, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा ये कर्तव्य है समाज में, इसलिए तुम ऐसा करो। तो भगवान की इंस्ट्रक्शंस इनके अंदर आता है, हमारी परिवार के प्रति जिम्मेदारियां क्या है, उन्हें कैसे निभाना है, क्या वास्तव में उसके पीछे हेतु होना चाहिए इत्यादि, शरीर के संबंध में जो भी कुछ है वो सब भगवान बता रहे हैं। हमें केवल भगवान जैसा बता रहे हैं वैसा करने की जरूरत है। दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन दिस। इसलिए हमें भक्ति भी करने का नहीं है, केवल भक्ति ही करने का है। बट भक्ति इंक्लूड्स कृष्णाज इंस्ट्रक्शंस ऑन एवरीथिंग। भगवान की इकोनॉमी के संबंध में इंस्ट्रक्शंस हैं, पॉलिटिक्स के संबंध में इंस्ट्रक्शंस हैं, परिवार को चलाने के संबंध में इंस्ट्रक्शंस हैं, सब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। कई बार लोग सोचते हैं भक्ति का मतलब है बस केवल हरे कृष्णा ये माला लो और बस माला करो, वो अल्टीमेट है, वो परम है। अगर हम केवल माला कर पाए, केवल भगवान का ध्यान, वो हाईएस्ट स्टेज है। जब हम शरीर के बंधन से मुक्त होकर केवल आत्मा के स्तर पर काम कर सके, वो उस समय की स्टेज है, दैट इज परफेक्शन। लेकिन वर्तमान समय में जो हमारा शरीर है उसका देखभाल करना आवश्यक है, उसके बिना आत्म साक्षात्कार भी नहीं हो सकता। तो फिर उस स्टेज में भगवान की इंस्ट्रक्शंस के अंदर ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं, इस सोसाइटी को कैसे चलाना है। भगवान ने बेस्ट इकोनॉमिक सॉल्यूशन दिया है, बेस्ट पॉलिटिक्स, ये पूरा जो भगवान कर रहे हैं इस समय कार्य, कौन राजा बनना चाहिए, ये संसार को सुचारू रूप से चलाने का कार्य है ना। तो इसलिए भगवान की इंस्ट्रक्शंस परफेक्ट इंस्ट्रक्शंस, इसलिए हमें और किसी की इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत नहीं है। हम क्या सोचते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए भगवद गीता और इकोनॉमिक्स के लिए मिस्टर सो एंड सो इकोनॉमिस्ट की किताब पढ़ेंगे, भक्ति के लिए भगवद गीता और पॉलिटिक्स के लिए कोई और व्यक्ति का किताब पढ़ेंगे और वो व्यक्ति अपने हिसाब से अपने मन से कुछ लिखेगा? नो, वो इम्परफेक्ट होगा। शास्त्र के अंदर, भगवान की इंस्ट्रक्शंस के अंदर सब डिपार्टमेंट, आप जो भी डिपार्टमेंट नाम दीजिए, वो सब डिपार्टमेंट की नॉलेज यहां पर है। लेकिन किस प्रकार से वो नॉलेज दी है कि जिस प्रकार से धीरे 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 हम इस भौतिक भवबंधन से मुक्त हो सके। लेकिन बाकी लोगों की इंस्ट्रक्शंस हैं और कंफ्यूज करने के लिए और हमें इसमें इंप्लीकेट करने के लिए भवबंधन में। इसीलिए यदि हम इस बात को समझ जाएं तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है जीवन में, केवल इस भगवद गीता को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है 100%। इसमें सब चीज का सोल्यूशन है, इसलिए हम कहते हैं भगवद गीता में देयर इज सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम एवरीथिंग। एक्चुअली प्रॉब्लम है क्योंकि हम भगवद गीता नहीं पालन करते हैं, यही दैट इज द प्रॉब्लम, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। कई बार हम बोलते हैं मेटीरियल प्रॉब्लम स्पिरिचुअल सोल्यूशन, भौतिक समस्याएं और उनका आध्यात्मिक उपाय, लेकिन कोई भौतिक समस्याएं नहीं है, आध्यात्मिकता का ना होना ही समस्या का कारण है, दैट्स इट। तो ये विश्वास, ये है एक बुद्धि। अगर मैं पेड़ की जड़ में पानी डालूंगा तो पत्तियों को फलों को अपने आप पानी पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ऐसा नहीं जड़ में पानी डाल के भी शंका है पता नहीं वो पेड़ को वो पत्ती को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो फल को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं पूरा विश्वास है जड़ को दूंगा अपने आप सिस्टम है कि पानी अपने आप सब जगह जाएगा जितना चाहिए, मुझे उसकी चिंता की जरूरत नहीं है और मैं अलग से दे भी नहीं सकता। उसी प्रकार से यदि मैं भगवान के आदेश का पालन करूंगा, भगवान के आदेश के अनुसार जीऊंगा, तो मुझे और किसी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। भगवान की इंस्ट्रक्शंस ऑल इंक्लूसिव है, परफेक्ट है, यह है व्यवसाय आत्मिक बुद्धि। तो इस प्रकार से भगवान बताते हैं कि ये इसका लक्षण है, और भगवान कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधव ना विधीयते। ये जो बुद्धि जो मैं बता रहा हूं इसमें कौन लोग स्थित नहीं हो सकते, कौन लोग मेरे से युक्त नहीं हो सकते, कौन लोग मेरे मार्गदर्शन में नहीं चल सकते? जो लोग भोग और ऐश्वर्य में अत्यधिक आसक्त हैं वो लोग कभी मेरे से लिंक्ड नहीं हो सकते। तो योगी बनने के लिए, भगवान का भक्त बनने के लिए प्राथमिक आवश्यकता है कि हम भोग और ऐश्वर्य में अनावश्यक आसक्त ना हो। शरीर के लिए जितना आवश्यक है वो आवश्यकता है, दैट इज ओके, लेकिन अनावश्यक रूप से भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होना तो फिर भगवान के साथ लिंक्ड कैसे होंगे, फिर भगवान के सेवक कैसे बनेंगे, फिर हमारा बुद्धि दौड़ेगी कैसे इस इंद्रियों को अनावश्यक संतुष्ट करूं। तो इसलिए ये प्राथमिकता है। तो जो लोग भोग ऐश्वर्य में अत्यधिक लिप्त हैं वो लोग भगवान की भक्ति करने में उनका सुदृढ़ विश्वास नहीं बैठता है, वो भगवान की भक्ति करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। क्यों इतने लोग इतने कम हैं? इतना हम लोग हर दिन वो संडे में मल्टीमीडिया में इतने सारे बैचेस कवर करते हैं, इतने सारे कम से कम 150 लोगों को बोलते हैं आइए, तो जाकर के 3-4 लोग आते हैं, बड़ा मुश्किल है। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ मजा कुछ डिस्को और कुछ ये लगाते तो बुलाएंगे जरूरत ही नहीं पड़ती, बस दूर से वो एक थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट सब लोग आए थे अपने आप। क्यों? क्योंकि सामान्यतः हम सब लोग भोग और ऐश्वर्य में आ सकते हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट ड्राई लगता है, भगवद गीता है क्या ये सब है। लेकिन ये ऐसे ही है जैसे शिरडी गन्ना, गन्ने को हम यदि जड़ से ऊपर की तरफ खाएं तो पहले मीठा लगेगा और फिर धीरे 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 फीका होता जाएगा, और यदि इसको ऊपर से नीचे की तरफ खाएं तो उल्टा होगा, पहले फीका लगेगा फिर धीरे 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 मीठा होगा। तो ये जो भोग ऐश्वर्य है वो क्या है? गन्ने को कैसे खाना है? नीचे से ऊपर की तरफ खाना है, शुरू शुरू बड़ा मीठा लगेगा, लेकिन जैसे 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 आप आगे जाएंगे धीरे धीरे उसका फीका होता जाएगा। आप पहली बार को कार लेके आएंगे तो पहले दिन तो बड़ा कार को सुबह उठ के पहले रोज साफ करेंगे, उसका इतना ध्यान रखेंगे, फिर धीरे 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 उसमें जब रोज पेट्रोल डालना पड़ेगा, बहुत पैसा खाते हैं, और फिर जब मेंटेनेंस आएगा, जब एक जगह पंचर हो जाएगा, फिर एक जगह कार बिगड़ जाएगी, क्या बर्बादी है, कितना दिक्कत है इसकी वजह से। तो शुरू में मीठा लगता है और बाद में कष्टदायक होता है, लेकिन जो भगवान की सेवा का आनंद है वो शुरू शुरू में फीका लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसमें आगे जाते हैं उसकी मिठास बढ़ती जाती है। तो शुरू में कड़वा लगता है ऐसा सुनना, भगवान का नाम जप करो, भगवद गीता सुनो, लेकिन देखिए जो लोग इसमें आगे प्रगति करते रहते हैं धीरे धीरे, तो उनको इसमें आनंद बढ़ता रहता है, और उसका आनंद का कोई सीमा नहीं है, वो बढ़ते रहता है बढ़ते रहता है बढ़ते रहता है, उसे कोई लिमिट नहीं है। तो ये डिफरेंस है भौतिक सुख में और भगवान की सेवा के सुख में। तो बुद्धिमान व्यक्ति को कौन सी चीज ऑप्ट करनी चाहिए? भगवान की सेवा के सुख को ऑप्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान ये बुद्धि योग को बताए, इसके लक्षणों को बताए, और भगवान बताते हैं फिर इस तरह से जो व्यक्ति बुद्धि योग में स्थित होता है वो स्थित प्रज्ञा, उसकी प्रज्ञा उसकी बुद्धि स्थित होती है, स्थिर होती है, विचलित नहीं होता है वो। तो फिर अर्जुन पूछते हैं कि ये जो व्यक्ति ऐसा जो स्थिर बुद्धि में है, स्थित प्रज्ञ, उसके लक्षण क्या होते हैं, हम उसे कैसे पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति स्थिर बुद्धि में है, ये भगवान के साथ युक्त है, कैसे हम उसको पहचान सकते हैं। तो ये अर्जुन का एक प्रश्न जो जिसका उत्तर भगवान देते हैं, जो अगेन फेमस पार्श पोर्शन है भगवद्गीता का, स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है। तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण भगवान कहते हैं, प्रजाहाति यदा कामान सर्व यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो स्थित प्रज्ञ की परिभाषा यहां भगवान दे रहे हैं। हरे कृष्णा, कौन है बाहर है? ओके, प्लीज कंसंट्रेट। जो व्यक्ति मनोधर्म, मन में उठने वाली सभी भौतिक इच्छाओं को छोड़ देता है, विहाय कामान या सर्वान मनोगतान, जो सब मन में उत्पन्न होती है, सब इच्छाएं मन में उत्पन्न होती है, ये सब मन के अंदर, मन का कारण है सभी। ऐसा करने बड़ा आनंद आएगा, ये सब एक्चुअली वास्तव में कोई सुख नहीं होता है। दाल भात खाना, चाहे उसको आप गैलॉप या कहीं और रेस्टोरेंट में जाए खाएं या घर में खाएं, दाल भात, दाल भात है, लेकिन वो मन के अंदर है। नहीं नहीं, वो होटल में जाए खाने में ज्यादा स्पेशल आनंद आएगा। ये मेंटल क्रिएटेड है, मेंटल कंकॉक्शन है, मेंटल कंकॉक्शन है। आपको जाना है, ट्रेवलिंग करना है, तो कार है, मारुति कार है, मर्सिडीज कार है, जाना है, जाना है, लेकिन वो मेंटल कंकॉक्शन नहीं, मर्सिडीज कार होगा तो ज्यादा आनंद आएगा। तो ये मनोगतान, मन के अंदर उत्पन्न होने वाले ये सब कथ है। तो ऐसी सब भौतिक इच्छाओं को छोड़कर आत्मन्येव तुष्टः, जो आत्मा के स्तर पर तुष्ट रहता है, अर्थात भगवान की सेवा में संतुष्ट रहता है, तो संतुष्ट रहता है। हम जो आपको कह रहे हैं, हम आपको, हमारा हेतु नहीं है कि आप इंद्रिय भोग को छोड़ दो और फिर दुखी हो जाओ। नहीं, वास्तव में सुख, भगवान की सेवा के सुख का आस्वादन करें, यह भगवद्गीता का संदेश। आत्मन्येव तुष्टः, जो भगवान की सेवा में परम संतुष्ट रहता है, जो वास्तविक सुख है, जो नित्य रहता है, ऐसे में जो रहता है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, वो स्थिर बुद्धि वाला है, वो विचलित नहीं होता है। तो अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज दोबारा भगवान बता रहे हैं, हम लोग प्रयास करते हैं, चाहते हैं कि हमारी इंद्रियां संयमित रहें, नियम में रहें, कंट्रोल रहें, हमारा मन कंट्रोल रहे। वी वॉन्ट टू कंट्रोल अवर माइंड एंड सेंसेस, हम सब चाहते हैं। बहुत सारी बैड हैबिट्स हमको होती हैं, किसी को शराब की लत है, किसी को सिगरेट की लत है, बहुत सारी लत हैं, और हम लोग चाहते हैं उनसे निकलना। तो भगवान, भगवद्गीता का क्या उपाय है इन बैड हैबिट्स को छोड़ने का, ये भी भगवान इस अध्याय में बताए हैं, कंक्लूडिंग पार्ट में, जो अर्जुन ने पूछा, स्थित प्रज्ञा जो विचलित नहीं होता इंद्रियों से। तो सामान्य रूप से जो बहुप्रचलित है समाज में, अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित करना चाहता है तो तपस्या करता है, इंद्रिय विषयों से अपने को दूर रखता है, एकांत में जाता है, और इस प्रकार से इंद्रियों के ऊपर दमन करने की कोशिश करता है। लेकिन भगवान भगवद्गीता में स्पष्ट बताते हैं, ऐसे प्रयास विफल होंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। केवल अगर हम इंद्रिय भोग की इच्छाएं तो हैं, लेकिन अपने को केवल रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो क्या होगा, जबरदस्ती अपने को रोक रहे हैं लेकिन इच्छाएं तो मन में हैं, इसलिए वो परमानेंटली वो इच्छाएं नहीं जाएंगी, इसलिए कभी भी मौका मिलेगा थोड़ा सा भी तो वो तुरंत इच्छाएं इतना वेग ले लेंगी कि हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और डूब जाएंगे। जैसे हम लोग डिटर्मिनेशन करते हैं, आज से सिगरेट नहीं पीना है, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, और फिर चार दिन की जितनी नहीं पी, पांचवें दिन उसकी डबल पी लेते हैं। तो ये रास्ता ऐसा है, केवल रोकने का रास्ता। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा संभव नहीं होगा, जब तक आप जो गलत स्वाद, जो आप स्वाद है उससे बेहतर स्वाद, हायर टेस्ट जब तक आपको नहीं मिल जाए, तब तक आप लोअर टेस्ट को नहीं छोड़ सकते। सामान्यतः लोग क्या कर रहे हैं, केवल रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं रुकेगा, क्योंकि हमको स्वाद तो चाहिए, आनंदमय अभ्यासात, वी वॉन्ट टू बी हैप्पी, दैट इज वो जीव का लक्षण है, वो जीवित व्यक्ति का लक्षण है, टू बी हैप्पी। तो अगर हमें सिगरेट या किसी से आनंद मिल रहा है उसको लेना छोड़ देंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट में उससे ज्यादा बेटर टेस्ट हमको नहीं मिल रहा है, तो फिर वो नियमन नहीं चलेगा। इसलिए बड़े बड़े योगीगण, विश्वामित्र जैसे योगी भी इतनी कठिन तपस्या करते हैं कई के हजार साल तक, लेकिन फिर अचानक वो मेनका आती है और उनके सब जो कई के हजार साल की योग साधना थी वो सब भंग हो जाती है, क्योंकि ये तरीका नहीं है। भगवान भगवद्गीता बताते ये तरीका नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जो इंद्रियां हैं बड़ी प्रबल हैं, ये जो व्यक्ति उनको संयमित करने की कोशिश कर रहा है उसका मन भी हर के ले जाती है, इतनी प्रबल है इंद्रिया। जैसे वायु नाव इवाम भसी, जैसे वायु नाव को खींच के ले जाती है, ऐसे ही ये जो इंद्रियां हैं इतनी प्रबल हैं कि थोड़ा सा भी ढील होती है तुरंत ये मन को खींच के ले जाती हैं और आदमी का सब इंद्रिय संयमन भंग हो जाता है। तो ये हम सबका डे टू डे एक्सपीरियंस है कि हम लोग चाहते हैं बुरी आदत से निकलना लेकिन नहीं निकल पाते हैं। तो इसका युक्ति भगवान यहां बता रहे हैं, तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अगर आप अपनी इंद्रियों को संयमित करना चाहते हो तो उसका उपाय है उन सबको मेरे से संबंधित करो। तानी सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत्परः, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाओ। इंद्रियों को कुछ ना कुछ एंगेजमेंट चाहिए, हम इंद्रियों को शिथिल नहीं कर सकते, वो फिर नहीं तो पत्थर हो जाएंगे। हम पत्थर नहीं है, हम जीव हैं, इसलिए हम कभी इनएक्टिव नहीं हो सकते। तो इंद्रियों को इनएक्टिव करने का प्रयास नहीं, बल्कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से वो इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। फिर उनकी जो ये विषय की तरफ भागने की प्रवृत्ति है वो बंद हो जाती है। तो ये तरीका है इंद्रियों को रोकने का। इंद्रियों को रोकना मतलब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, और भगवान की सेवा में जब इंद्रियां लगती हैं तो उससे जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है वो हायर टेस्ट की वजह से वो जो भौतिक विषयों का सुख भोगने की जो प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाती है। इसलिए भक्त, क्योंकि भगवान की सेवा में हायर टेस्ट अनुभव कर रहा होता है, स्वाभाविक रूप से ये जो विषयों का भोग है इसके प्रति उसकी रुचि खत्म हो जाती है। तो इस विषय में एक कहानी है, एक यमुनाचार्य बड़े महान भक्त हुए, जो ये रियलिटी है, रियल कहानी है, और वो बड़े एक बड़े राजा थे। तो राजाओं के पास सब प्रकार की भोग करने की फैसिलिटी रहती थी। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत भोग इत्यादि किए, सब प्रकार के भोग किए। तो वो जब भक्त बन गए, बड़े महान भक्त बने, आचार्य बने, तो वो लिखते हैं यद अवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदयो, जब से मेरा मन भगवान की सेवा में रत हुआ है और मैं भगवान की सेवा में हर क्षण नए नए दिव्य आनंद का अनुभव कर रहा हूं उनकी सेवा से, तब तब मेरे मन के अंदर स्त्री संगम और इस सब प्रकार के जो भोग वासनाएं हैं इनका विचार भी यदि मेरे मन में आता है तो मैं उस पर थूकता हूं और मेरा होठ सुकड़ जाते हैं डिसटेस्ट के कारण। तो भगवान की सेवा में हायर टेस्ट लेने की वजह से जो भौतिक सुख अभी तक सुख लग रहा था वो जैसे इट बिकम्स डिस्टेस्टफुल, स्वादहीन हो जाता है। जिस आदमी को खूब अच्छे पकवान मिलते हों तो उसे सूखी रोटी उसका सूखी रोटी है, जिसको अच्छे पकवान मिल रहे हैं उसके उसका फिर टेस्ट नहीं रहता है। तो उसी प्रकार से जिस जो व्यक्ति धीरे धीरे अनुशीलन से भगवान की भक्ति करता है और भगवान की सेवा का आनंद अनुभव करता है उसके लिए अपने आप ये भौतिक सुख नगण्य लगने लगते हैं, वेस्ट लगने लगते हैं, जीरो नो डिस्टेस्ट लगने लगते हैं, डिस्टेस्टफुल लगने लगते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने को संयमित कर पाता है आराम से, ये परफेक्ट बैलेंस स्टेबिलिटी कंडीशन है, स्टेबल कंडीशन है। तो इस प्रकार से वो स्थित प्रज्ञ है, इसलिए केवल भगवत भक्ति स्थित प्रज्ञ हो सकता है। तो एक अम्बरीश महाराज एक महान राजा थे, अम्बरीश महाराज राजा थे लेकिन बड़े भक्त, महान भक्त थे। वो अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे, सभी मना कृष्ण पदारविंद, मन से हमेशा भगवान के चरणों का चिंतन किया करते थे, अपने हाथों से राजा थे लेकिन हाथों से भगवान के मंदिर सफाई किया करते थे, अलग अलग प्रकार की हाथों सेवा करते थे, पैरों को भगवान के मंदिर जाने में लगाते थे, कानों को भगवान की भगवान के विषय में सुनने में लगाते थे, जीवा को भगवान का गुणगान करने में लगाते थे, आंखों को भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करने में लगाते थे, इस प्रकार से हर इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाते थे। तो एक बार एक दुर्वासा मुनि, आपने नाम सुना होगा दुर्वासा मुनि, बड़े महान मुनि थे, बहुत बड़े योगी तपस्वी थे, इतनी शक्ति थी योगी शक्ति कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में जा सकते थे, यहां तक कि वैकुंठ में भी अंदर चले गए थे, इतनी शक्ति थी। लेकिन बड़े अभिमानी थे, तो उनके 60,000 शिष्य थे, उनके साथ वो एक बार चले गए अम्बरीश महाराज के पास उनके महल में। और उस दिन द्वादशी थी, और द्वादशी के दिन सुबह एकादशी व्रत तोड़ने का समय था। जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा मैं स्नान करके आता हूं, तो वो स्नान करने चले गए। और इस बीच में वो एकादशी व्रत पारायण करने का समय आ गया, तोड़ने का समय आ गया। तो अभी विडंबना हो गई, क्या किया जाए, अगर व्रत ना तोड़ा जाए तो निर्जल करते थे, निर्जल एकादशी बिना जल पिए हुए, तो अगर नहीं तोड़ा जाए तो भी भंग हो जाएगा सब एकादशी व्रत, और अगर कुछ खा लेंगे तो अपराध हो जाएगा मुनि के लिए कि बिना मुनि के पूछे उनके आए बिना कुछ ले लिया। तो फिर जो ब्राह्मण थे उनके सलाहकार, उन्होंने उनको बताया कि आप थोड़ा पानी पी लीजिए, इसलिए पानी पीने से एक प्रकार से एकादशी व्रत टूट भी जाएगा, और आपने कुछ खाया नहीं तो इसलिए वो एक तरीके से नहीं भी, आपने उनका सम्मान भी किया, ऐसा भी हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा किया, तो दुर्वासा मुनि बड़े क्रोधित हो गए जब आए तो, और अपनी योग शक्ति से उन्होंने एक जिन उत्पन्न किया उनको मारने के लिए, अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। तो वो जो जिन जब मारने के लिए उन्होंने उत्पन्न किया, तो भगवान विष्णु, क्योंकि भगवान विष्णु के महान भक्त थे, इसलिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस जिन को मार दिया, और वो फिर सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे दुर्वासा मुनि को मारने के लिए चल पड़ा। अभी दुर्वासा मुनि अपनी जान बचाने के लिए सब जगह घूम रहे हैं, सब आश्रम में जा रहे हैं, योगियों के पास जा रहे हैं, देवताओं के पास जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग में जा सकते थे, सब जगह घूम रहे हैं, लेकिन अभी सुदर्शन चक्र के आगे कौन रक्षा कर सकता है। तो अंत में भगवान विष्णु के पास जाते हैं, रक्षा कीजिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूं, तो आपकी रक्षा, आपको तो माफी केवल जिनके प्रति आपने अपराध किया है वो माफ करें तो ही आप बच सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि मैं अपना असम्मान सह सकता हूं, लेकिन मैं अपने भक्तों का असम्मान नहीं सह सकता हूं। तो अंत में वो अम्बरीश महाराज के पास आते हैं, लेकिन अम्बरीश महाराज भक्त हैं इसलिए वो तुरंत उनको माफ करते हैं, ऐसे कृष्ण, इसलिए वो बच जाते हैं इस प्रकार से। तो अम्बरीश महाराज एक सामान्य राजा थे, भक्त थे, लेकिन इतना मन के और सत्य में संयम था, और दुर्वासा मुनि बड़े योगी थे लेकिन भक्त नहीं थे, देखिए उनकी क्या दुर्दशा हुई। लेकिन एक भक्त हैं, भक्त होने की वजह से ही उनके अंदर संयम था, और सब प्रकार के अच्छे गुण थे, और सब प्रकार की योग सिद्धियां भगवान ने उनके लिए दिखाई। तो इसीलिए स्थित प्रज्ञा व्यक्ति केवल वही हो सकता है जो अपनी इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगा। इसलिए ये जो हमारा पूरा आंदोलन है, इसमें ये प्रशिक्षण है कि अपनी सब इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाएं। अब इस समय आप कौन सी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं। और मैं कौन सी इंद्रियों को लगा रहा हूं? जिह्वा को। फिर अभी कास के बाद हम कौन सी इंद्रियों को सेवा में लगाएंगे? फिर जिह्वा, प्रसाद, प्रसाद लेने में हम लोग सेवा में लगाएंगे। फिर आप यहां पर दर्शन कर रहे हैं, आपको भगवान सेवा में लगा रहे हैं। फिर कई हमारे भक्त हैं जिन्होंने अभी अभी जो प्रसाद होगा, भगवान को भोग लगाया है जो है उसको बनाया है, तो आपके यहाँ से हाथ से सेवा की है। बहुत से भक्त हैं जो मंदिर साफ करते हैं, तो वो सब हाथ से सेवा करते हैं। आप लोग सब आए हैं, चल के आए हैं या कार में आए, जो भी वो चलने का ही एक एक्सटेंशन है, तो इस प्रकार से आपने उसको सेवा लगाया है। फिर मन से जब आप चिंतन करेंगे इन इंस्ट्रक्शंस को, भगवान ने क्या बताया उस पर मनन करेंगे, भगवान के सुंदर विग्रह का मनन करेंगे, हरे कृष्ण मंत्र बोलते वो शब्द ध्वनि को सुनते उस पर मनन करेंगे, तो आप मन को भगवान की सेवा में लगाएंगे। इस तरह से ये प्रशिक्षण लेना है कि कैसे सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। और सबसे पहले जो इंद्रिय जो भगवान की सेवा में लगानी है वो जिह्वा, जिह्वा से प्रारंभ होता है सबसे पहले। तो जिह्वा से भगवान का नाम लेना, भगवान के बारे में बोलना, सबसे पहले भगवान का नाम लेना, कानों से सुनना, और भगवान का प्रसाद सेवन करना। ये चीज हमने आपको बताई थी चार सेशन में, लास्ट सेशन में, हम जो भी खाएं वही खाएं जो भगवान को अर्पित हुआ हो, प्रसाद ही केवल खाएं। तो इस प्रकार से ये तरीका है। तो ये दूसरे अध्याय का समापन इस प्रकार से हम करते हैं, जिसमें भगवान ने अंत में स्थित प्रज्ञा की परिभाषा बताई, लक्षण बताए, उससे पहले बुद्धि योग बताया, अर्थात आत्मा के स्तर पर कार्य करने का विज्ञान, जिसमें हम अपने इंद्रिय भोग के लिए नहीं, अच्छे बुरे कर्म के फलों को दोनों से ऊपर उठ करके केवल भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, ये बुद्धि योग है। और इस प्रकार से कार्य करने में परिणाम ये होता है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकल करके हमेशा हमेशा के लिए भगवत धाम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये समापन करते हैं। हरे कृष्ण। अभी किसी का प्रश्न है इस आज के विषय के ऊपर तो कृपया आप पूछ सकते हैं। प्रश्न क्या है?
वही प्रश्न है कि हम लोग भगवत धाम जा सकते
हैं। मतलब आपका प्रश्न ये है कि क्या हम भगवत धाम जा सकते हैं संसार में रहकर के? नहीं,
प्राप्त कर सकते हैं
क्या? प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो हमने आपको जो अभी तक शिक्षा दी भगवत धाम जाने की, उसकी शिक्षाओं में ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी कि आपको यदि भगवत धाम जाना होगा तो आपको परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़ना होगा। हमने ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी। हम बल्कि आपको बता ही रहे हैं बार बार स्पष्ट रूप से कि जब तक शरीर है तो शरीर का लालन पालन जरूरी है। जब तक ये शरीर है यानी कि समाज है तो समाज की व्यवस्था भी जरूरी है। लेकिन उस हर चीज को भगवान के आदेश के अनुसार केंद्र में भगवान की भक्ति को रखते हुए हमें उसको उस प्रकार से करना जैसे भगवान चाहते हैं। अर्थात शरीर यापन के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, कार्य कीजिए और उसके फलों को भगवान को भोग दीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए और उसको प्रसाद रूप में जितना आवश्यक शरीर के लिए है उतना कीजिए लीजिए, जिससे कि आप भगवान की सेवा करते रहें और इस प्रकार से अपने कार्य के फलों को, कर्म के फलों को भगवान की सेवा में अर्पित कीजिए। आवश्यकता से अधिक है, शरीर यापन से अधिक है तो उसको भगवान की सेवा में लगाइए। जितना अधिक लगाएंगे उतना ही आपका ये कर्म बंधन आसक्ति कम होगी, उतना ही भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी, उतना ही हम तैयार होंगे भगवत धाम जाने के लिए। हाँ जी, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए नहीं, आध्यात्मिक भगवत धाम में हमारा भौतिक शरीर होता ही नहीं है, आध्यात्मिक ही शरीर है। अभी तो भौतिक शरीर हमें मिला क्योंकि हम भोग वासना करना भोग चाहते थे, भोगना चाहते थे, इसलिए भोग एक इसलिए भौतिक शरीर मिला। तो अभी तो भौतिक शरीर मिल गया है इसलिए अभी बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। अभी शरीर मिल गया, नहीं मिलना चाहिए था लेकिन अब मिला है क्योंकि हमने गलती की है। अभी इसको कैसे भगवान की सेवा में करके वी कैन बेस्ट यूज इट। आपकी कंपनी में कोई वेस्ट प्रोडक्ट जा रहा है, समहाउ यूटिलाइज इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो इस प्रकार से ये शरीर को अभी हमको यूज करना है भगवान की सेवा में, इसकी जरूरत नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में कोई भौतिक, आध्यात्मिक जगत में कोई भौतिक शरीर नहीं है, वहां आध्यात्मिक शरीर है, उस आध्यात्मिक शरीर से हम भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन अभी है ये शरीर, ये बीमारी है, लेकिन अभी कैसे इसको भगवान की सेवा में जोड़ना है? तो अगर भौतिक शरीर इस समय तो है ना, अगर उसका निर्वाह नहीं करेंगे तो फिर कैसे जिएंगे? नहीं तो आप फिर आगे प्रगति कैसे करेंगे? इससे में जरूरी है इस भौतिक जगत, इस भौतिक शरीर का पालन करें, लेकिन उसका पालन इस प्रकार से किया जाए कि जो भगवत भक्ति हो सके। यही प्रश्न है आपका?
यानी आत्मा भौतिक शरीर के बिना आध्यात्मिक ज्ञान ले सकती है?
देखिए, आत्मा को भौतिक जगत की कोई, भौतिक शरीर की कोई जरूरत नहीं है, वो हमेशा उससे मुक्त ही रहता है। आध्यात्मिक ज्ञान लेने के नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान उसके अंदर ऑलरेडी है, आत्मा के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान ऑलरेडी है, अभी केवल वो इस भौतिक शरीर की वजह से ढक गया है। तो ये भौतिक शरीर का ही यूज करके उसको हमें पुनरावृत्ति उसको याद दिलाना है। ऐसा नहीं कि ये ज्ञान हमने है नहीं और कुछ बाहर से लेना है, आत्मा ऑलरेडी, आत्मा के अंदर वो ज्ञान है लेकिन ढका हुआ है। ओके, हाँ जी, आप मृत्यु के बाद आत्मा की दशा? अच्छा, आई थिंक आज के हमारे इस कोर्स में ऐसे बहुत सारे ऐसे भक्त भी हैं जो शायद 4 सेशन वाले नहीं। आप राजकोट से हैं? अच्छा, यहीं से कोर्स में ही हैं? हाँ, अच्छा। एक्चुअली ये विशेष रूप से जो क्लास है इसमें हम लोग एक ये भगवद्गीता कोर्स किए हैं 4 दिन का, तो उसके अंदर सिस्टमेटिकली हम लोग वो डिस्कस करते आ रहे हैं। एनीवे, आपने प्रश्न किया है तो उसका उत्तर हम देंगे। तो आत्मा की गति हमारे इस समय इस जीवन में किए गए कर्म के अनुसार निर्धारित होती है। अगर हम भौतिक जगत में ही इच्छाएं, भौतिक जगत को भोगने की इच्छाएं करते रहेंगे तो इसी भौतिक जगत में कोई ना कोई शरीर मिलेगा। यदि हम भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो फिर भौतिक शरीर नहीं मिलेगा, आध्यात्मिक स्वरूप पूरी तरह से प्रकट होगा जिससे हम भगवत धाम जा पाएंगे। ओके, अभी हम यहां पर समाप्त करते हैं। तो अभी हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का एक माला करके और फिर यस प्लीज गिव मी। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है कि आज के जो प्रश्न हैं ये, तो यहां पर केवल ये प्रश्न उन्हीं लोगों के लिए हैं जो लोग इस कोर्स में, एडवांस भगवद्गीता कोर्स में जो लोग हर बार आते हैं उन्हीं के लिए है। तो कृपया करके जो लोग गेस्ट हैं, तो अगर कॉपीज बची तो आप ले सकते हैं, अन्यथा पहले केवल कृपया वही लोग लें इस क्वेश्चन पेपर को जो लोग इस कोर्स में रजिस्टर्ड हैं। जल्दी देना पड़ेगा ना फटाफट प्रश्न उत्तर शुरू। और कोई प्रश्न है इतने किसी का, एक दो प्रश्न थोड़ा हेल्प, और किसी का कोई प्रश्न है इस बीच में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भगवान से पैसा नहीं मांगना चाहिए लेकिन पैसा जरूरी है, तो फिर क्या करना चाहिए? तो अगर बच्चा, छोटा बच्चा है, अपने माँ बाप से मांगता है, माँ प्लीज मेरे को खाने को दो, प्लीज आप मुझे क्यों खाने को नहीं दे रहे हो, प्लीज मेरे को खाने को दो, तो ये सही है? माँ बाप बच्चों को खाना नहीं देते, अब बच्चा कहे प्लीज आप क्यों नहीं खा रहे, प्लीज दो, तो ये तो एक भगवान के ऊपर एक आलोचना है उनकी कि आप कैसे, आप हम खाने भी नहीं दे रहे। तो भगवान सबको खाने को दे रहे, जो लोग भगवान को नहीं मांग रहे, जो लोग भगवान से खाना नहीं मांग रहे भगवान को नहीं दे रहे, जो नास्तिक हैं, जो असुर हैं, जो भगवान के द्वेष करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं उनको भी दे रहे, जो जानवर हैं उनकी तो बुद्धि नहीं है उनको नहीं दे रहे, इतने हाथी हैं, इतने सारे इंसेक्ट्स हैं, इतनी चींटियां हैं उनको नहीं दे रहे। ये हमारी भूल, हम सोचते हैं जब तक भगवान के पास खाने के लिए नहीं मांगेंगे तो मिलेगा नहीं, ये हमारी मूर्खता, ये निंदा है भगवान की। इसलिए भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए, केवल भगवान से मांगना चाहिए, भगवान आपकी सेवा कैसे करें हम, वही मांगना चाहिए। वो तो भगवान ही दे रहे हैं, उसको उसको क्यों मांगते, और निंदा है भगवान की, अरे दे तो रहा हूं उसको, उसे भी मांग रहे थे। हरे कृष्ण।